ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
محترم حضرات آج حج سے متعلق کچھ چیزیں پیش کرنے کا گزشتہ سنیچر ہی سے وعدہ تھا ویسے حج اور عمرے کے مسائل اور اس کی تفصیلات کو بہت زیادہ بڑی بڑی تفصیلی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں اور ہماری مجلس کا وقت اس کے لیے ناکافی ہے یہاں چند موٹی موٹی ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کی بنیاد پر حج یا عمرے کا طریقہ آسانی کے ساتھ ذہن نشین ہو سکے۔ حج کس کے اوپر فرض ہے وہ بھی ایک تفصیلی چیز ہے۔ ابھی تو جو لوگ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں انہی کو اس سلسلے میں کچھ چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ یہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو حج اور ایک ہے عمرہ، اور یہ دونوں عبادتیں وہیں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ اور مطاف اور صفا مروہ اور پھر منا، عرفات، مزدلفہ، ان مقامات میں ادا کی جاتی۔ حج میں منا، عرفات، مزدلفہ کا بھی تعلق ہے اور عمرے کے اندر صرف مسجد حرام، بیت اللہ اور صفا مروہ۔ عمرے کا جو عمل ہے وہ مختصر ہے، اس لیے پہلے اس کو بتلاؤں گا اور اس کے بعد وہ اگر سمجھ میں آ گیا تو حج کا عمل اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں اور آسان ہو جائے گی۔ عمرہ ہو یا حج ہو، دونوں کے لیے احرام ضروری ہے۔ پہلے تو احرام کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ احرام کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے اور عام بول چال میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ احرام ان دو چادروں کا نام ہے جو احرام کی حالت میں بدن کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے، وہ تو احرام کا لباس ہے، احرام کی حالت کا لباس ہے۔ احرام جو ہے وہ ایک خاص کیفیت اور خاص پوزیشن کا نام ہے۔ میں اس کو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے ہم اور آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ اب جب ہم نماز کا ارادہ کریں گے تو نماز پڑھنے کے لیے ہم کو کچھ خاص اہتمام کرنا پڑے گا کہ بھئی نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں کر لینی ہے، اپنے ستر کو چھپا لینا ہے، اور جن کپڑوں سے ستر چھپایا گیا ہے وہ کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہوں، اور پھر پاکی بھی دونوں طرح کی، حدث سے بھی، نجاست سے بھی، یعنی حکمی نجاست سے بھی اور حقیقی نجاست سے بھی، اور قبلے کی طرف منہ ہو، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال جب نماز کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہم ایک خاص پوزیشن اختیار کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی نماز پڑھنا چاہے گا وہ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر لے گا، اور قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے تو وضو کر لے گا، بدن کو پاک کرنے کا، کپڑوں کے پاکی کا، جس سطر کو چھپانے کا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد سب تیار ہو کر کے جب آئے گا تو قبلہ کی طرف منہ کرے گا، اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بعد اب وہ نماز جب شروع کرنے والا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے. ایک تو نماز کی نیت کرتا ہے، جس نماز کو ادا کرنے جا رہا ہے، فجر کی، ظہر کی، جو بھی ہو، فرض، نفل، سنت، واجب، یہ ایک تو نیت کرے گا اس کی کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، اور دوسرا اس نیت کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ایک مخصوص انداز سے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے. یہ دو چیزیں کرتا ہے. جب ایسا کر لیا اب اس کی نماز کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. اب وہ نماز کی پوزیشن میں آ گیا. اب تک نماز میں نہیں تھا، اب نماز میں آ گیا. یہ نماز والی خاص حالت. اسی کو شریعت کی اصطلاح میں اور شریعت کی زبان میں تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ. کہ یہ نماز کی تحریمہ میں. تحریمہ کا مطلب کیا؟ تحریمہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنا. دیکھیے ہم جب تک کہ نماز میں نہیں ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر چہرے کو گھما سکتے ہیں، سینے کو گھما سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بہت سے کام کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم نماز شروع کر دیں گے تو نماز شروع ہو چکنے کے نتیجے میں یہ ساری چیزوں پر پابندیاں. پہلے کھا سکتے تھے، اب نماز کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی چیز پی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، سینے کو چہرے قبلے سے ادھر ادھر ہٹا نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں. تو دیکھیے بہت سارے کام جو یہ اللہ اکبر اور نیت کرنے سے پہلے ہمارے لیے حلال تھے، نیت کر کے جب اللہ اکبر کہا وہ سارے کام کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. اسی لیے اس اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر تحریمہ. کیا تکبیر؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا. تکبیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہر تکبیر تحریمہ نہیں ہے. نماز کے اندر ہم بعد میں رکو میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہیں گے، اس کو تکبیر تحریمہ نہیں کہتے. رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہیں گے، سجدے سے اٹھنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہیں گے، دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہیں گے، پھر کھڑے ہونے کے لیے بھی اللہ اکبر. نماز میں کئی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر کہا جانے والا یہ سب اللہ اکبر تکبیر تو ہے، لیکن تکبیر تحریمہ نہیں. تحریمہ تو پہلی شروع میں نیت کرنے کے بعد جو اللہ اکبر بولے تھے، اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہ یہ ہے وہ اللہ اکبر کہ جس کے بولنے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو. اس لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. باقی دوسری سب تکبیریں تو ہیں لیکن وہ تحریمہ نہیں. تو دیکھیے اب یہ جو اللہ اکبر کہا، یعنی تکبیر تحریمہ ہم نے کہی اور اس کی وجہ سے ہم ایک مخصوص پوزیشن میں آ گئے. اسی پوزیشن کا نام ہے تحریمہ، حرمت صلات. اب یہ ہماری پوزیشن جو ہے یہ نماز والی کب تک رہتی ہے؟ سلام پھیرنے تک، دو رکعت پر، چار رکعت پر، جتنی بھی آپ نے نیت باندھی ہے، آخر میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم، اب یہ حالت ختم ہو. یہ سلام نے آ کر کے آپ کی اس پوزیشن کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. इसीलिए सलाम को हदीस में तहलीला कहा गया। क्या कहा गया? हदीस में आता है तहरीम व तकबीर व तहलील व तस्लीम, कि नमाज को हराम करने वाली, नमाज के अंदर हुरमत पैदा करने वाली चीज अल्लाह होकर और नमाज के इस हुरमत को खत्म करने वाली चीज क्या? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये सलाम तहलीला है और तकबीर क्या है? तहरीम है। तो देखो अल्लाह अकबर कहने से लेकर सलाम फेरने तक, चाहे आपने दो रकातें पढ़ी हो या चार, ये जो एक मखसूस हालत में आप रहे जिसमें आप न किसी से बोल सकते थे, न खा पी सकते थे, न अपना सीना इधर घुमा सकते थे, न चल फिर सकते थे, ये जो सारी पाबंदियां आप पर रही, इन पाबंदियों का नाम क्या था? तहरीमा। क्या था? बस। इसी तरीके से जब कोई आदमी हज अदा करने का इरादा करता है और हज अदा करने के लिए नियत करेगा और नियत करके हज की अदायगी के लिए जैसे नमाज की नियत करता है और नमाज की नियत के बाद नमाज शुरू करने के लिए क्या बोलता है? अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से हज की भी नियत करेगा, उमरे की भी नियत करेगा और नियत करने के बाद लब्बैक बोलेगा। क्या बोलेगा? लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व नियमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पूरे कलिमात हैं लब्बैक के, जिनको चार हिस्सों में आपको अदा करना है, चार जगह पर ठहरना है। बाकायदा वो भी तरीका यही है उसके बोलने का। वैसे अगर इधर उधर कम ठहर जाओगे तो भी अदा हो जाएगा, उसका सही तरीका ये। तो अब ये जब आप नियत करें उमरा का, उमरा की नियत कर लें, उसके लिए अरबी के अंदर अल्फाज है। अब देखिए नमाज की नियत करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ी थी, तो इसी तरीके से उमरे की या हज की नियत करने से पहले भी आपको कुछ तैयारियां करनी। उन तैयारियों में एक तो है आप गुसल कर लेंगे कि भाई गुसल कर लो। ये गुसल कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, सुन्नत या मुस्तहब का दर्जा रखता है। और ये गुसल जो करवाया जाता है सफाई के लिए, इसलिए कि एक मरतबा जब आप एहराम बांध लेंगे तो एहराम बांधने के बाद आप जिस्म की सफाई नहीं कर सकते, मैल छुड़ाना और जिसे जिस्म की जैब व जीनत से ताल्लुक रखने वाली चीजें वो नहीं होगी जब तक के भाई उससे पहले ये कर लो। ये गुसल जो है पाकी के लिए नहीं है, गाय के लिए है। इसीलिए अगर औरत हैज की हालत में है और वो एहराम बांधने का इरादा करती है तो वो भी क्या करेगी? गुसल करेगी। हालांकि हैज चालू होने की हालत में गुसल करने से पाकी आने वाली नहीं है। जैसे किसी का पेशाब जारी हो और वुजू करे तो वुजू होना होगा नहीं, लेकिन ये चूंकि ये गुसल जो है वो पाकी के लिए नहीं किया जाता, गाय के लिए किया जाता है, सफाई के लिए जिस्म की, इसलिए ये गुसल बहरहाल करना है। जो कोई औरत अगर हैज की हालत में है तो भी ये गुसल करेगी, गुसल कर लिया। और अगर गुसल का मौका नहीं है तो वुजू कर लिया, वुजू से भी काम चल जाता है। जैसा कि अभी बताया कि ये गुसल कोई फर्ज वाजिब नहीं है, तो चाहे गुसल कर लो बेहतर तो यही है या फिर वुजू कर लो। और वुजू करने के बाद अब आप अपना सिला हुआ लिबास उतार दो और उतार करके जो है दो चादरें जो पहन लो, एक नीचे लुंगी के तौर पर एक ऊपर के हिस्से। ये लिबास है जो एहराम में पहना जाता है, इसको हम बोलते हैं एहराम, लेकिन एहराम इसका नाम नहीं है, ये तो ये एहराम का लिबास। देखो अभी आपने पहन लिया, आप एहराम में नहीं आए। अगर एहराम इसी का नाम होता तो खाली पहनते ही आप क्या हो जाते? एहराम में आ जाते। हालांकि सब जानते हैं कि ऐसा पहन लेने की वजह से एहराम में आए नहीं। मतलब समझ में आ गया? मैं समझाना जो चीज चाहता हूँ वो। अच्छा अब ये लिबास इसलिए पहले से पहनवाया जाता है, एक मरतबा जब आप नियत कर लेंगे एहराम की और एहराम के लिए लब्बैक बोल देंगे तो आप एहराम के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद आप अपना सिला हुआ लिबास उतारें तो जितनी देर इतना लिबास उतारने में लगेगी आप क्या होंगे? मुजरिम। जैसे कि आप नमाज शुरू करने से पहले किबले की तरफ मुंह कर लेते हैं, असल तो मुंह कब करना है किबले में? नमाज के अंदर करना है, लेकिन आप यूं मुंह करके अल्लाह अकबर कहने, फिर यूं मुंह करे, तो इतनी देर तो आपने आपके एक सेकंड ही सही, लेकिन एक सेकंड आपका मुंह क़िबले की तरफ नहीं रहा, इसलिए पहले से मुंह करके तैयार। जैसे नमाज की हालत में आप क्या करते हैं, सतर छुपाते हैं। एक आदमी नंगे होने की हालत में तकबीर तहरीमा कह रहे हो, फिर बाद में एक लिबास पहने, तो चाहे कितना ही जल्दी पहन ले, लेकिन एक दो सेकंड वो उसके जो गुजरेंगे वो नमाज के अंदर ऐसी हालत में गुजरेंगे कि वो सतर छुपाए हुए, इसलिए पहले से पहनना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये दो चादरें इसलिए पहले से पहनवाई गई, एक मरतबा जब आप नियत करके अहराम शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद फिर कोई सिलाव वाला लिबास उतारे और वो पहने, तो जितनी देर लगी उतनी तो आपने गुनाह का इर्तिकाब किया नहीं, आपने एक ममनू चीज पहनी, इसलिए पहले से गोया तैयारी करवा दी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो बहरहाल मैं ये अर्जा कर रहा हूँ कि जब एहराम का इरादा करें तो उसकी तैयारी में गुसल करना है या वजू कर लीजिए, और गुसल या वजू करने के बाद अब दो रकात नमाज पढ़नी है। अगर ये दो रकात चूंकि नफल है इसलिए आपको वक्त भी देखना है कि जिस वक्त ये दो रकात आप पढ़ने जा रहे हैं मकरू वक्त तो नहीं, अगर मकरू वक्त है तो न पढ़िए। या इसी तरह औरत अगर हैज की हालत में है तो वो भी पढ़ेगी नहीं, इसलिए कि हैज की हालत में उसके लिए तो नमाज पर पाबंदी है, तो अगर वक्त मकरू है या औरत हालत हैज में तो न पढ़े, अगर पढ़े हुए भी चालू हो जाएगा काम जैसा कि अभी आगे बतलाता। और अगर मकरू वक्त नहीं आप पढ़िए दो रकात पढ़ेंगे, ये दो रकात एहराम के लिए पढ़ी जाती है और ये मुस्तहब का दर्जा रखती है। इसके अंदर आप पहली रकात में सूरह फातिहा के साथ कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। अब दो चादरें पहनकर आपने नमाज शुरू की थी, समझे कि नहीं? जिस वक्त नमाज शुरू की तो ये जो दो चादरें पहन के गई सर वगैरह भी ढांप करके नमाज पढ़नी है, क्योंकि अभी एहराम चालू हुआ नहीं, ऐसे एहराम की हालत में तो सर ढांप नहीं सकते, लेकिन अभी एहराम चालू हुआ नहीं, अभी तो आपने एहराम के शुरू करने के लिए क्या किए है, नमाज पढ़ी। अब ये सलाम फेरने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वो जो सर ढांपा हुआ था उसको खोल दो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझाया कि नहीं? इसलिए कि एहराम की हालत में सर ढांपने पर भी क्या है, पाबंदी है, इसलिए पहले खोल दो। खोलने के बाद अब आप नियत करो, क्योंकि उमरे का तरीका बतलाता हूँ, तो उमरे की नियत अरबी के अंदर अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरत फयस्सिर हाली व तकब्बलहा, या अल्लाह मैं उमरे की नियत कर रहा हूँ उसको मेरे लिए आसान कर दीजिए उसकी अदायगी, और उसको मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। अगर अरबी में ये ना आता हो तो आप उर्दू में बोल सकते हैं, गुजराती में बोल सकते हैं कि अल्लाह मैं उमरे की नियत करता हूँ, और नियत तो दिल में असल होती है, ये जबान से तो खाली उसका इजहार है, जबान से न भी बोलें और दिल में आपका इरादा है कि मैं उमरे का एहराम बांधने जा रहा हूँ, बांध रहा हूँ, तो काफी जबान से कह देना अच्छा साबित है। नमाज के अंदर तो जबान से नियत अदा करने का मसला मासूर नहीं है, ये साबित है, तो बहरहाल जबान से आप नियत करें और अब उसके बाद पढ़ेंगे लब्बैक। देखो नियत कर ली, नियत करके आप क्या पढ़ लिया, लब्बैक, जहां लब्बैक पढ़ा आप एहराम में आ गए। देखो मैंने पहले बताया था जैसे नमाज की नियत की और अल्लाह अकबर कहते ही एहराम में नमाज में आ गए, ऐसे यहां पर भी जब आपने उमरे की नियत की और लब्बैक पढ़ा, लब्बैक पढ़ते ही आप क्या हो गए, दो चीजें हैं नियत और तल्बिया। लब्बैक खाली नियत करने से एहराम में नहीं आएंगे, खाली लब्बैक पढ़ने से एहराम में नहीं, अभी मैंने लब्बैक पढ़ी और मैं एहराम में नहीं आया लब्बैक पढ़ने की वजह से, दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। इससे मालूम हुआ कि जो भी हज के लिए जाना चाहेगा उसको लब्बैक तो सीखना जरूरी है, इसलिए कि अगर लब्बैक बोलेगा नहीं तो एहराम में आएगा ही नहीं। तो बहरहाल किसी न किसी तरह भी जहमत और तकलीफ बर्दाश्त करके भी बूढ़ा हो तो भी वो यूं कहे कि मेरी जबान पे नहीं चढ़ता, तो भी बहरहाल उसको किसी भी तरह सीखना तो है ही, लेकिन ये नहीं बोलेगा तो एहराम शुरू नहीं होगा, बात सीधी है। इसलिए लब्बैक जरूर सीख लीजिए भाई, जो एहराम का इरादा, जो नमाज के या उमरे के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये मैंने जैसा कि कहा कि आपने उमरे की नियत की और नियत करके लब्बैक पढ़ी। जहाँ लब्बैक पढ़ी आपने, लब्बैक पढ़ते ही आपका एहराम शुरू हो गया। और लब्बैक में बेहतर यह है कि तीन मर्तबा पढ़े। एक मर्तबा पढ़ने से भी एहराम तो चालू हो गया, लेकिन आप तीन मर्तबा जब भी लब्बैक पढ़ें, लब्बैक के अल्फाज को तीन मर्तबा अदा करें। और लब्बैक जहाँ पढ़ ली, एहराम शुरू हो गया, अब अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका रिज़ाका वल जन्ना व औज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ये दुआ भी मासूर है, साबित है कि अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी और जन्नत मांगता हूँ और तेरे गज़ब और नाराज़गी और जहन्नम से पना मांगता हूँ। अभी आपका एहराम शुरू हो गया, एहराम शुरू हो गया तो इस एहराम से पहले बहुत से काम जो आपके लिए हलाल थे अब हराम हो गए। पहले आपके लिए सिले हुए कपड़े पहनना हलाल था, मर्दों की बात करता, औरतों की बात नहीं। या मर्द के लिए सिले हुए कपड़े पहनना हलाल था, अब एहराम शुरू हो गया, अब सिले हुए कपड़े नहीं। औरतों के लिए तो एहराम की हालत में भी सिले हुए कपड़े पहनना है, वो चादरें नहीं पहने। इससे पहले आपके लिए जो है सर ढांपना हलाल था, आप सर ढांप सकते नहीं, औरतें सर ढांप सकती। चेहरा ढांपना आपके लिए हलाल था, आप चेहरा ढांप सकते नहीं है। औरतों के लिए भी चेहरा खुला रखना जरूरी है हालत एहराम के अंदर। अब पर्दे के वास्ते उसकी एक तदबीर बताई गई है कि कोई चीज आगे करके कपड़ा यूं लटका दो ताकि अजनबी को चेहरा नजर ना आए। अगर कपड़ा ऐसा है जो चेहरे से लग रहा है तो फिर अगर ये 12 घंटे लगा तो दम देना पड़ेगा। बहरहाल पर्दे का भी लिहाज और ये दोनों की शक्ल ये है। तो बहरहाल चेहरा इसी तरीके से खुशबू नहीं लगा सकते, बाल नहीं कटवा सकते, नाखून नहीं तराश सकते। आप मर्द हैं तो ऐसा जूता जो ये हिस्सा ढांपने वाला हो, ऐसे वो चप्पल या जूते नहीं पहन सकते। ये भी ये टखने छूट जाए बस, जैसे चप्पल हैं स्लीपर हैं वो पहने जाएं। तो ये सारी पाबंदियां जो है, मियां बीवी हैं सोबत नहीं कर सकते, ये सब एहराम से पहले हलाल था, अब क्या हो गया हराम। ये आपका एहराम शुरू हो गया, खुशबू नहीं लगा सकते किसी भी बदन के हिस्से को, कपड़े को अभी खुशबू नहीं लगा सकते। अब जो है, अब आप जो सफर करेंगे हवाई जहाज के अंदर, हवाई जहाज में जब बैठेंगे तो हवाई जहाज वाले आपकी खिदमत करेंगे, उस खिदमत में नाश्ता वास्ता देने में, साथ में आपके हाथ बात पूछने के लिए कुछ वो जो है वो खुशबूदार रुमाल देते हैं, खुशबूदार रुमाल ऐसा पैकिंग में वो खोलते हैं तो वो खुशबूदार होता है। अब हाजी साहब खास करके वो जिसने कभी पहले सफर नहीं किया है हवाई जहाज का, वो तो खुशबूदार रुमाल देखकर खुश हो जाता है और भूल भाल जाता है कि मैं हालत एहराम में हूँ। वो खोल करके वो हाथ वाथ भी पूजा और चेहरे पर भी खूब अच्छी तरह मल लिया और दो दम वाजिब हो गई, हाथ पर करने की वजह से और चेहरे पर मलने की वजह से। इसलिए भाई इससे बचने की जरूरत है, ये जो खुशबूदार टिश्यू दिया जाता है रुमाल वहाँ, उससे अपने आप को बचाओ, उसको दूर रखो। ऐसी खुशबूदार पीने की कोई चीज़ हो, शरबत या जिसमें खुशबू मिली हुई हो, उसके पीने की भी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल अपने आप को बचाना है। अब ये एहराम के अंदर ये जो पाबंदी है सर ढांपने की, चेहरा ढांपने की, खुशबूदार चीज़ इस्तेमाल करने की, इसी पाबंदी की वजह से आदमी ये कोशिश करता है कि ज़रा आखिरी वक्त में एहराम बांधा जाए ताकि इस पाबंदियों पर हम आसानी से अमल कर सकें। घर से बांध के निकले, बम्बई भी रहना है और इस दरमियान में कहीं गड़बड़ हो गई थी, इसलिए इस सहूलत को मद्दे। वैसे तो अफजल ये है कि आदमी घर से एहराम बांध कर निकले। वातिमुल हज वल उमरता लिल्लाह की तफसीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि घर से एहराम बांध के निकले तो बहुत अच्छा, लेकिन एक तरफ वो अफजलियत और दूसरी तरफ जो है वो जो है एक एहराम के अंदर मना की हुई चीज में पड़ जाने का डर आदत न होने की वजह से। इसलिए भाई वो ज्यादा ज्यादा एहतमाम की चीज है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि भाई चलो, वैसे तो आसान ये है कि आप वहाँ मुसाफिर खाने से जब हवाई अड्डे जाने के लिए चलें तो गुसल करके चादरें पहन कर नियत कर लें, लेकिन आपको ये डर है कि हवाई अड्डे में वो वहाँ की कार्रवाई मुकम्मल करने के दरमियान कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो अभी आपने चादरें वगैरह तो पहन ली गुसल करके, लेकिन अभी नीयत नहीं की है। दो रकात पढ़ के नीयत करके तलबिया पढ़ने का है, वो अभी किया नहीं, कोई अभी अहराम की पोजिशन में नहीं आए, तैयारी कर लिए। हवाई अड्डे पर आकर इमिग्रेशन वगैरह से फारिग होकर फिर हवाई जहाज में बैठने से पहले वहाँ मौका मिलता है, वहाँ अगर दो रकात पढ़नी शुरू कर दिया तो ठीक, नहीं तो हवाई जहाज में जाने के बाद, अब हवाई जहाज जब रवाना होगा, बाज लोग यूँ समझते हैं कि जद्दा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद करेंगे एहराम पहनेंगे, तो ये दम वाजिब हो जाता है। देखो शरीयत ने उस आदमी के लिए कि जो मक्का मुकर्रमा जाना चाहता है उमरा या हज के इरादे से, उसके वास्ते एक पाबंदी लगाई है, कुछ जगह मुकर्रर कर दी कि बीच में मक्का चारों तरफ वो जगह, इधर से आओ तो यहाँ, इधर से आओ तो ये, इधर से आओ तो वो जगह, उससे पहले पहले आप एहराम बांध लीजिए, उसी का नाम है मीकात। अगर वहां से पहले एहराम नहीं बांधा, यहाँ तक के बगैर एहराम के उस जगह को आपने क्या कर लिया, पार कर लिया, तो आपने एक जुर्म किया और उसकी सजा यह है कि आप पर दम वाजिब है। दम में यह है कि एक बकरा ज़बह करो, दम का नाम सुन के लोगों का दम निकलता, बड़े बड़े रौसा मालदार वो भी दम का नाम सुन के डरते, वहां कोई जो है बकरा ज़बह करने, हालांकि वैसे नफल दम देने की बड़ी फजीलत है। हजरत साहबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत विदा के मौके पर 100 ऊंट ज़बह किए। आजकल लोग खरीदारी तो बहुत सारी करते हैं, यानी लाखों का माल खरीदेंगे, लेकिन किसी एक को भी ये तौफीक नहीं होती कि ये जो वाजिब है उसके अलावा ऐसे नफल हदी के तौर पर जानवर ज़बह। अल्लाह ने पैसे, जिसके पास पैसे नहीं होते तो छोड़िए इसे, लेकिन पैसे हैं वो भी नहीं, वो खरीदारी करेगा, बहुत से तो उसकी खरीदारी के लिए मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। तो बहरहाल ये याद रखिए कि हदी ये जो जानवर ज़बह किया जाता है हरम में, उसकी बड़ी फजीलत है। वैसे नफल के तौर पर भी आप जितने जानवर ज़बह करेंगे उतना आपको सवाब ज्यादा मिलेगा, उतना अल्लाह ताला का कुर्ब ज्यादा हासिल होगा। खैर ये तो एक बीच की चीज आ गई। मैं ये कह रहा था कि मीकात, मीकात का मतलब ये है कि मक्का मुकर्रमा आने से बहुत कुछ पहले, कई मील पहले, कुछ जगह ऐसी मुकर्रर की गई है कि इधर से आ रहा है कोई शाम की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ ज़ुल्हुलैफ़ा, भाई ज़ुल्हुलैफ़ा को आप जो है उससे वहां से एहराम बांध लीजिए। अगर वहां नहीं बांधा और आगे बढ़ गए तो आप मुजरिम हो गए, अब दंड है आपको, पेनल्टी लग गई कि भाई आपको दम देना है। इधर से आ रहे हैं इराक की तरफ से, तो जाते इर्क पर से आप वहां से एहराम बांध, उससे पहले पहले एहराम बांध लें। अगर वो पार हो गया तो इधर से आ रहे हैं यमन की तरफ से, तो यह लमलम है एक जगह, और जो है मक्का मदीना मुनव्वरा से आ रहे हैं तो नहीं ज़ुल्हुलैफ़ा, और वो शाम की तरफ से जौफा है। तुम्हारा ये मीकात कहलाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग यहाँ से जो सफर करते हैं हवाई जहाज में, उसके मुतालिक लिखा है कि ये हमारा हवाई जहाज मीकात पर से गुजरता है, इसलिए जो लोग जद्दा उतर कर एहराम बांधते हैं उन पर यकीनन दम तमाम उलमा के नज़दीक वाजिब हो जाता है। बाज लोग पुरानी किताबें पढ़ते हैं जिसमें ये मसला आया जद्दे से एहराम बांधने का, स्टीमर वाले इसमें सफर में, वो एक अलग मसला है। अब ये स्टीमर वाला सफर तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए वो स्टीमर वाले सफर की वजह से जद्दा एहराम बांधना बाज उलमा ने इजाजत दी थी, वो उसके साथ था। हवाई जहाज वाले सफर में किसी ने इजाजत दी नहीं है, सब ये कहते हैं कि आपको पहले से एहराम बांधना है, इसलिए कि आप मीकात पर से गुजरते हैं। अगर आपने नहीं बांधा यहाँ तक जद्दा पहुंच गए तो आपको दम वाजिब होगा। अब या तो वापस जाओ मीकात पर और वहां से, अब मीकात पर वापस जाने का सवाल नहीं पैदा हो। तो बहरहाल आप पहले से बांध लें हवाई अड्डे से मुसाफिर खाने से, तो भी हवाई जहाज में बैठने के बाद तो बम्बई से लेकर वहां तक का सफर 4.5-5 घंटे का होता है, तो जद्दा आने से जो है 1.5 घंटा पहले आप यकीनन क्या कर लें, नियत कर लें, वो भी कर सकते हैं आप अपनी सीट पर बैठे बैठे, क्योंकि ये सफर के अंदर नफल नमाज बैठे बैठे पढ़ी जा सकती है, तो आप फर्ज नहीं, नफल की बात कर रहा हूँ, नफल नमाज आप अपनी सीट पर बैठे बैठे इशारे से रुकू सद्दा करते हुए पढ़ेंगे, तो 2 रकात पढ़ के वही جیسا بھی طریقہ بتلایا تھا، نیت کر کے آپ لب تلبیہ پڑھ لیجیے، آپ کا احرام کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. بہرحال یہ عمرے کا احرام شروع ہوا. جدہ اترے، اترنے کے بعد وہاں کی جو کارروائی ہے حکومت کی وہ ساری پوری کر کے آپ بسوں میں سوار ہوں گے، اور پھر آپ کو بس لے جائے گی وہاں مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ بس والا آپ کو لے جائے گا اور اتارے گا معلم کے یہاں، معلم کے حوالے کرے گا. آپ بیچ میں اترنا چاہیں تو اترنے دے گا نہیں. اور ٹور والوں کے ساتھ ہے تو ٹور والا معلم سے معاملہ کر کے بارہ قیام گاہ پر لے جائے گا. وہاں پہنچ کر اپنی قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد اب آپ کو حرم میں جانے کی تیاری کرنی. وضو ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر کے حرم جاؤ. عورتیں بھی مناسب وقت میں، اور اگر عورت حیض کی حالت میں آ گئی تو اب وہ حرم جائے گی نہیں، اپنی قیام گاہ پر رہے گی. جب حیض سے پاک ہو تو غسل کرنے کے بعد پھر وہ جائے گی، وہاں تک وہ حرم نہیں جا سکتی. خیر، تو بہرحال آپ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد حرم جانے کی تیاری کر لیجئے مسجد حرام پہنچنے کی. آپ وضو وضو کر کے اب نکلے مسجد حرام جانے کے لیے. آپ بہت سارے دروازے ہیں مسجد حرام کے، کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہوں گے آپ. ویسے تو عمرہ کے لیے جو ہے باب السلام یا باب العمرہ سے داخل ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اس کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہے جس دروازے سے بھی. ایک لطیفہ یاد آ گیا، میں پہلی مرتبہ جب حج میں جانا ہوا تھا تو وہاں پہنچنے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، پہلا عمرہ کرنے کے لیے جی وہاں سنین جا کر کے احرام باندھ کر کے آئے. ٹیکسی والے سے یوں کہا کہ بھائی باب السلام لے جاؤ، تو اس نے ایسے کسی دروازے پر اتار دیا. میں نے کہا باب السلام کل ابوا بہا باب السلام سی بھی آئی. دیکھو ہے نا ان لوگوں کیسے حاضر جواب، کہ اس حرم کا ہر دروازہ باب السلام. جواب یہ دیا لطیفے کے طور پر. تو بہرحال تو آپ جب داخل ہوں گے، اندر داخل ہونے کے بعد آپ کی پہلی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر جب پڑے گی تو آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہیے، تکبیر اور تحلیل. ویسے تکبیر تشریف جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی الہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بالا تین مرتبہ اللہ اکبر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہ دعا آپ کی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. اس لیے اس وقت دعا بھی کر لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، ہر طرح کی چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں. مانگنے والوں نے مختلف چیزیں تجویز کی ہے، کیسی کیسی چیزیں اپنے اپنے ذہن سے لوگ اچھی اچھی چیزیں مانگتے ہیں. بارہ آپ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مانگ لیا. اب آگے بڑھے تو مسجد حرام کے اندر، جیسے عام دوسری مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد ہے، دو رکعت پڑھی جاتی ہے. مسجد حرام کا تحیا جو ہے طواف، وہاں جب جاؤ تو آپ طواف کرو. ہاں طواف کا موقع نہ ہو تو دو رکعت پڑھ کے کام چلا سکتے ہو. تو بڑا ابھی آپ کو طواف کرنا ہے. یہ عمرے میں آپ نے پہلا کام تو کیا تھا احرام باندھنے کا، اب یہ عمرے کا دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں آپ، جس کا نام ہے کیا؟ طواف. عمرے میں کل چار چیزیں ہیں، احرام، طواف، سعی اور حلق، بال کٹوانا. یہ چار چیزیں ہیں. احرام تو باندھ چکے تھے، اب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے پاس جب پہنچیں گے آپ طواف شروع کریں گے. کعبۃ اللہ کے چار کونے ہیں، ایک کونے کا نام ہے رکن، یہ حجر اسود والا جو کونا ہے وہ، اس کو رکن ایسے کونے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. ارکان اربع چار کونے، تو رکن حجر بولتے ہیں اس کو، ویسے خالی رکن بھی بولتے ہیں، حجر اسود والا کونا. اس کے بعد اس کی ادھر سامنے ہے وہ رکنے یمانی کہلاتا ہے، ادھر جو ہے رکنے عراقی، اور دوسرا رکنے شام. یہ چار کونے. تو طواف کی شروعات جو ہے وہ حجر اسود جس کونے پر لگا ہوا ہے وہاں سے کی جائے گی. اس لیے آپ اس کونے کی طرف جائیے. اب بھیڑ کے زمانے میں جب جائیں گے تو کونا کہاں نظر آتا ہے، تو اب جو پرانے جو گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بتلائیں گے کہ اب اس کونے کے سامنے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک علامت کے طور پر ایک کالا پٹا بنا رکھا ہے. یہ کعبۃ اللہ ہے چاروں کونے والا، چار کون ہیں ان کا بدلہ. اب یہ مثلا حضرت یہ حضرت اسد والا کون, یہ دوسرا رکن شامی, رکن عراقی, رکن یمانی. اب یہ کونا ہے تو یہاں سے ایک پٹا وہاں تک دیکھو, بیچ میں کعبۃ اللہ ہے سیاہ رنگ کا, اور پھر بیچ میں خالی جگہ ہے یعنی اوپر چھت نہیں ہے. چھت والا حصہ بیچ کی خالی جگہ کے بعد, چھت والا حصہ بیچ کی خالی جگہ کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے اتنی بیچ میں خالی جگہ, تو بیچ میں یہ جتنی کھلی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مطاف. کیا کہتے ہیں؟ یعنی طواف کرنے کی جگہ, وہ مطاف کہلاتا ہے. تو اس حصے میں لوگ طواف کرتے ہیں اس کھلی جگہ کے اندر. تو یہ مطاف جو بنا ہوا ہے کعبہ کے چاروں طرف کھلی جگہ ہے, تو یہ حجرِ اسود والے کونے میں ایک کالا پٹا وہاں سے شروع ہوا ہے, تو وہ پورے مطاف میں, یہ پوری خالی جگہ میں, اس کونے میں یہاں سے لے کر وہاں تک, یعنی جہاں چھت والا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں تک چلا گیا ہے. یہ اس علامت کے طور پر, نشانی کے طور پر, کہ آپ جہاں اس پٹے پر آئیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ حجرِ اسود کے سامنے آئے. طواف کی شروعات چونکہ حجرِ اسود کے سامنے سے کی جاتی ہے, اب اصل تو یہ کہ حجرِ اسود کے بالکل قریب ہوں تو وہاں پھر حضرت اسود کو بوسا دینے والا مسئلہ, اب وہ تو اس زمانے میں بالکل یوں سمجھیے کہ ناممکن اور محال ہے. طواف اس انداز سے شروع کرنا, اس لیے اس کو چھوڑ کر کے میں آپ کو جو عام طور پر ہوتا ہے وہ بتلاتا ہوں. اب اس میں آپ وہ پٹا جو ہے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے, تو طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت, ویسے تو آپ جب اندر پہنچے اس ارادے سے تو نیت موجود ہی ہے, لیکن پھر بھی زبان سے اگر کہہ لیں اللہم انی اُرید طواف البیت سبعۃ اشواط للہ تعالیٰ فیسر لی وتقبل منی, کہ اللہ میں بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کرنا چاہتا ہوں, سات چکر آسان کر دیجئے, قبول کر لیجئے, یہ دل میں نیت ہو. یہ نیت تو پٹے پر پہنچنے سے پہلے کر لیجئے, اسی لیے پٹا اگر یوں ہے یوں تو پٹے کے, چونکہ طواف یوں ہوگا تو پٹے کے ادھر کا کنارہ جو ہے یعنی اس طرح کھڑا رہے کونے کی طرف منہ کر کے, کہ آدمی کا دایاں کندھا اور دایاں پیر جو ہے پٹے سے باہر ہو, اور وہاں نیت کر لیں. نیت کرنے کے بعد پھر پٹے کے اوپر آ جائیں. پٹے کے اوپر آئے ہم سمجھے سے کہ یہ ہے, اب یہ کونے کے بعد میں یوں بتا, یہ حضرت اسود والا کونا ہے, یہاں پٹتا ہے. اب پٹے سے اب یہ جو ہے چونکہ طواف یوں کیا جائے گا تو یوں ذرا ادھر رہ کر کے نیت کرے گا, نیت کرنے کے بعد اب پٹے پر آئے گا. پٹے پر آنے کے بعد اب جو ہے اس کو دو کام کرنے, ایک تو استقبال حجرِ اسود اور ایک ہے استلام حجرِ اسود. طواف شروع کرنے سے پہلے استقبال, استقبال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز میں ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, اسی طرح طواف شروع کرنے سے پہلے اسی پٹے پر کھڑے کھڑے آپ نیت تو کر چکے ہیں, کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے, سمجھا ہے کہ نہیں, اور پھر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ, کان تک ہاتھ لے گئے بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ, یہ کہہ رہا تھا استقبال حجرِ اسود. یہ بالکل طواف کے شروع میں ہے, پھر نہیں کرنا, پھر ہر چکر پر یہ ہوگا نہیں, پہلے ہی شروعات یہ کہہ کر کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دی. اب استلام, استلام اصل بوسا دینا, قریب ہوتے تو لیکن وہاں قریب کا سوال نہیں, آپ دور رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے آگے کیجئے گویا اگر حجرِ اسود کے قریب ہوتے تو آپ جو ہے اس پر ہاتھ رکھتے تو یوں ہوتے, اس لیے کہ حجرِ اسود جو ہے آدمی کے یہ سینے کے سامنے آتا ہے قد کے اعتبار سے, تو ہاتھ یوں کریں گے گویا تصور یہ ہو کہ وہیں کونے پر حجرِ اسود پہ ہم نے ہاتھ رکھے, اس طرح ہاتھ یوں کرے گا اور ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ اس طرح کر کے پڑھے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ اکبر لا, یعنی اس میں تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود ہے, تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہتھیلیاں ہیں ان کو یہ بوسا دے, وہ اس طرح بوسا دے آواز نہ ہو, سینہ سامنے کرنا ہے, شروعات طواف شروع ہو رہا ہے بالکل پورا, یعنی پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی ادھر ہی ہے پورا, سب اس طرح مکمل طور پر یہ طواف شروع ہو رہا ہے, یہ سب اسی طرح کرنا ہے, یہ سب तो पहले इस्तकबाल किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इला इलम कानों तक हाथ ले जाकर फिर छोड़ दिए, फिर ये इस्तिलाम यूं हाथ करके अल्लाह अकबर ला इला इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और यूं। लेकिन अब ये तवाफ शुरू करने से पहले एक काम करना था, वो जो चादर थी हमारी अहराम की ऊपर वाली, उस चूंकि ये तवाफ करने जा रहे हैं हम किसका, उम्रे का, के बाद सही भी करनी है, इज्तिबा कहते हैं, ये चादर जो है इस तरह के दायां कंधा उसका खुला रहे, चादर का ये पीछे वाला किनारा ये किनारा यूं कर लिया, ये दायां कंधा खोल दिया, इस तरह हमें ऊपर वाली चादर, बस ये जो तवाफ पहला तवाफ करेंगे यानी उम्रे का सही वाला, उसी में और तवाफ ही में, तवाफ पूरा होने के बाद फिर ये खत्म कर देना। वहां आप देखेंगे बहुत से अरब हजरात वो पूरा जब तक अहराम उनके जिस्म पर है, वो तौलिये वाला अहराम होता है तो ये पिन लगा करके इसी तरह खुला हुआ ही छोड़ देते, हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है, खाली ये सुन्नत है फकत कब तवाफ के अंदर, और वो भी वो तवाफ जिसके बाद हम बाद में क्या करने वाले हैं, सही करने वाले। इसलिए बहरहाल ये इस्तिबा कर लिया था, अब तवाफ शुरू करते हैं, इस्तकबाल हुआ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम और फिर इस्तिलाम हुआ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह और बोसा दिया। अब यूं घूम गए। अब ये काबतुल्लाह जो है हमारी बाईं तरफ है। अब याद रखिए कि जब तक तवाफ पूरा न हो वहां तक चेहरा और सीना उधर करना नहीं, किधर काबा की और पीठ भी नहीं करनी, बस इसी तरफ, और उधर देखना भी मना किया है, वैसे देखना मकरूह बतलाया गया है तंजीह, और सीना करना जो है वो तो मकरूह तहरीमी बतलाया गया है। अगर सीने इधर ही सीना करके चले हैं तो इतना तवाफ आपका मोतबर नहीं है, पीछे हटो और फिर से करो, इसलिए ये बड़े अहतमाम के साथ, बस अपने सामने जैसे नमाज के अंदर होती है इसी तरह नजर तस्वुर ये हो कि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही है, उसका हिस्सा मुझे भी मिल रहा है। हदीस में आता है काबतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, जिसमें से 60 जो है वो तवाफ करने वालों को, 40 नमाज पढ़ने वालों को और 20 उसके देखने वालों को हासिल होती है। इस तस्वुर के साथ वो आगे, अब ये आगे बढ़ने से क्योंकि ये उम्रे का तवाफ है, अब तक जो आप एक बात और भी थी कि अहराम बांधने के बाद आप लब्बैक पढ़ते रहिए, खाली शुरू में लब्बैक पढ़ा इतना नहीं, मौका ब मौका नमाजें पूरी हुई सलाम फिरा लब्बैक, किसी से मुलाकात हुई तो लब्बैक, वो आप हवाई जहाज की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो लब्बैक, उतर रहे हैं तो लब्बैक, मकान पे जा रहे हैं, लेकिन जहां आप तवाफ शुरू किया लब्बैक का सिलसिला बंद हो जाएगा उम्रे के लब्बैक का। अब आपने इस्तिबा किया, अब आप चक्कर काटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये उम्रे का तवाफ है उसके बाद सही है, इसलिए इसमें रमल भी है। रमल का मतलब क्या, आदमी सीना जो है अकड़ करके और कंधे हिला करके छोटे छोटे कदमों से तेजी के साथ चले, दौड़ना नहीं है, जरा तेज चलना है। अब भीड़ की वजह से मुमकिन ना हो तो ठहर जाए जहां थोड़ी जगह मिले, इसी तरह पहले 3 चक्कर इसी तरह पूरे करने, उसको कहते हैं रमल, और बाद वाले चक्कर में आम रफ्तार से चलना है। तो अब रमल भी करेंगे, अब आप इसी तरह चलते हैं, अब घूमते घूमते पूरा फिर करके अब यहाँ आगे एक आएगा जो इसके सामने वाला कोना था, उसको कहते हैं रुकने यमन, वहां से गुजरते हुए आप देखेंगे लोग क्यों करते हैं हाथ, अल्लाह अकबर अल्लाह, आपको ऐसा करना नहीं है। रुकने यमानी का इस्तिलाम तो है लेकिन उसमें हाथ से इशारा नहीं, वो तो अंतरिक्ष से हो तो हाथ यूं करना, या एक हाथ दाया हाथ या दोनों बाया हाथ भी नहीं, और वहां बोसा भी हाथ को या किसी चीज को देना नहीं, लेकिन अहराम के आलम में तो चूंकि वहां खुशबू लगी हुई होती है इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं, और इतना करीब मौका मिलता भी नहीं। खैर बहरहाल अब हजरत अस्वद पूरा चक्कर काट करके इस पट्टे पर जब दोबारा पहुंचे तो अब आपके पांव का रुख तो यही हो, अब आप यूं सीधे नहीं होंगे, पांव का रुख जो है उंगलियों का रुख इधर ही हो, अलबत्ता अब इस पट्टे पर खड़े होकर आप चेहरा और सीना, पांव का रुख इधर ही रखते हो, चेहरा और सीना यूं करके, पहले तो यूं करके हाथ किए थे, अब यूं करके ये दोनों हाथ उसी तरह, ये इस्तिलाम, देखो अब कानों तक हाथ ले नहीं जाना है, अब खाली इस्तिलाम यानी हाथ ये सीने के करीब यूं हाथ करके जी हमने हजर अस्वद के दोनों तरफ रखे हूँ और वही अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और ये दूसरा इस्तिलाम। आगे बढ़े, दूसरा चक्कर पूरा हुआ, तीसरे चक्कर के अंदर भी इसी तरह रमल करते हुए करना है। तीसरे चक्कर में पट्टे पर जब पहुंचे तो इसी तरह हर चक्कर में पट्टे पर पहुंच करके पांव का रुख यूं हो और ये आप दोनों हाथों से ये इशारा यूं करके उसको बोसा देंगे, ये कहलाता है इस्तिलाम। समझना है कि नहीं? पहले तीन चक्करों में रमल करना है और बाद वाले चार चक्करों में आम तरह चलना है सादा तरीके से। सात चक्कर जब पूरे होंगे, सातवां चक्कर जब पूरा होगा तो उस वक्त भी अब उसी तरह पहले जो शुरू किया था इस तरफ सीधे होकर के अब इस्तिलाम। ये सात चक्कर हुए और इस्तिलाम कितनी मरतबा हुआ? आठ मरतबा। शुरू में हुआ था या आखिर में हुआ? ये आठ मरतबा इस्तिलाम हुआ। अब इसके बाद आप मुल्तजम के करीब जाकर के दुआ करेंगे, वहां चिपकने का तो मौका भी मिले तो क्योंकि आप एहराम की हालत में हैं और वहां आमतौर पर खुशबू लगी हुई होती है, इसलिए अपने आप को खुशबू लगने से बचाना है, तो वहां करीब जाके दुआ मांग सकते। उसके बाद आप दो रकात पढ़ें तवाफ की। वहां जो है मकाम इब्राहिम एक शीशे का घर बना हुआ है कांच का और उसके अंदर एक पत्थर है जिसके ऊपर कदमों के निशाना थे। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। तो बहरहाल वो अलामत के तौर पर निशानी के तौर पर वहां रखा गया है, उसको कोई चूमना चाटना नहीं है। लोग वहां जाकर के बिहार ये करते हैं यूं करते हैं कुछ नहीं, देखना चाहे तो देख लीजिए जियारत कीजिए, लेकिन बहरहाल तवाफ के बाद आपको दो रकात पढ़नी है तवाफ की। तो अब ये मसलन मकाम इब्राहिम है तो आप यहाँ काबा है तो वहां इस तरह खड़े रहिए कि आप काबे की तरफ मुंह किए हुए हैं और आपके और काबे के बीच में कौन मकाम इब्राहिम आ जाए। अब तवाफ करने वालों की भीड़ है तो वहां खड़े रहिए, उस भीड़ के पीछे बीच में लोगों को तवाफ करने वालों को दुश्वारी हो ऐसी हरकत न कीजिए, वहां जहाँ खाली जगह हो वहां औरतें हो तो वो जरा और किनारे पर रहेगी। बहरहाल ये दो रकात इस तरह अदा करनी है कि आपकी और काबतुल्लाह के बीच में मकाम इब्राहिम हो और ये दो रकात तवाफ की आप पढ़ेंगे। अत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये आयत भी इसी सिलसिले में नाजिल हुई है। दो रकात से जब आप फारिग हो गए तो अब आप जाएंगे जमजम पर, वहां कुआं तो जो है वो तो बंद कर रखा है उसको, लेकिन यह है कि वहां नीचे जहां जमजम लिखा हुआ औरतों के लिए अलग है मर्दों के लिए अलग है वहां नल बने हुए हैं, वहां जाकर के आप पानी पिएंगे जमजम का और खूब सैर होकर के पीजिए, यानी उस पानी पीने में जरा बराबर भी बुखल से काम न लें, जितना ज्यादा पी सकते हो जितना अंदर उतार सकते हो, इसलिए कि यह अलामत बतलाई गई है कि अहले ईमान और मुनाफिक कम पीता है, मोमिन जो है वो ज्यादा पीता है खूब, और उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। देखो ये मताफ में तवाफ कर रहे थे ना, तवाफ के दरमियान भी दुआ क्या होती है? कबूल। काबतुल्लाह में वो मकामा जहाँ दुआ कबूल होती है उसमें वो मुल्तजम के पास भी दुआ कबूल होती है, तो मताफ के अंदर तवाफ करते करते आपको दुआएं करनी है। तवाफ के दौरान आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन तस्बीह पढ़ना और दुआ करना अफजल है तिलावत के मुकाबले में। और दुआएं अंदर किताबों में होगी, पहले चक्कर में ये दूसरे चक्कर में ये, तो वैसे वो मासूर नहीं है। हाँ इतना है कि मकाम ये रुकने यमानी के बाद गुजरते हुए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार, ये जो दुआ है वो मासूर। और इसी तरह अल्लाहुम्मा कन्नीनी बिमा रज़क्तनी व बारिक ली फीमा आतैतनी व वखलुफ अला कुल्ली गाइबतिल्ली बिखैर, जब तवाफ खत्म होने का यानी हजरत अस्वद के करीब पहुंचे उस वक्त, ये भी मासूर। बहरहाल दुआएं अरबी में याद हो तो अरबी में, वरना आप उर्दू में गुजराती में अपनी जबान में दुआ कीजिए। इस मौके पर किताबों में ये लिखा है कि बाज लोग जो है वो लिखी हुई सामने रख करके जोर जोर से पढ़ते हैं, एक तो जोर जोर से पढ़कर दूसरों को जो है वो जो हरज में डालते हैं, ये मुनासिब नहीं है। फिर ये कि दुआ के लिए जैसा खुशू होना चाहिए, दिल का लगना चाहिए, वो हासिल नहीं होता। उसके बजाय तो आप अपने दिल में दुआ मांगते रहें, वो ज्यादा अच्छा है। दोबारा सवाब के दौरान ये किया था। अब ये जमजम पर पहुंचे तो जमजम भी कबूलियत दुआ की जगह है, वहां पानी पीजिए, दुआ कीजिए। इस मौके पर दुआ आई है इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, मन कोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्कन वासियन व अमलन सालिहन व शिफा मिन कुल्ले दा। ये और के अल्लाह मैं तुझसे कुशादा रोजी और जो है वह अमल सालेह और हर बीमारी से तंदरुस्ती और इल्म नाफे का सवाल करता हूँ। और ये और भी जितनी दुआ मांगे मांग सकते हैं। और उसके बाद फारिग होकर के आप बाहर आइए, यानी अंदर नीचे है जमजम, बाहर आए। अब आपको क्योंकि सही करनी है तो सही के शुरू करने से पहले भी हजर असद का इस्तेलाम करना है, वही तरीका। अब वहां पर बाहर निकलकर पट्टे पर आइए, वही काले पट्टे पर, काले पट्टे पर आकर हजर असद के सामने इसी तरह सीने के यूं हाथ करके वही इस्तेलाम कीजिए आप, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला। ये इस्तेलाम आप इसलिए कर रहे हैं कि अब आपको जाके क्या करनी है, सही करनी। ये सही की शुरुआत में भी इस्तेलाम है हजर असद का, ये इसीलिए ये यूं समझिए नवी मर्तबा हुआ, वो तवाफ में आठ हो गए तो ये नवी मर्तबा। और ये करके फिर आप सफा पर जाएंगे, उधर ही सफा है। अब तो बेमा बदा अल्लाह बही, अल्लाह ताला ने कुरान में जिस का पहला नाम लिया इन सफा वल मरवा, तो सफा का नाम पहले है मरवा का बाद में, तो आप भी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, सफा से कर रहे हैं। खैर या ना आता हो तो कोई हरत नहीं, आप सफा पर पहुंचिए। और सफा पर पहुंचने के बाद वहां पर जो है आप बिल्कुल पत्थरों और पहाड़ की शक्ल तो नहीं, जरा कोने में थोड़ी सी रखी है, ऊंचाई है, बहुत ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना ऊपर पहुंचिए कि वहां से जरा आप जरा फिर चेहरा कर दीजिए किसकी तरफ, काबतुल्लाह की तरफ। वहां से सुतूनों के बीच में से आपको काबतुल्लाह नजर आएगा, तो जहां जहां काबतुल्लाह नजर आए अब आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए, देर तक दुआ करनी। ये भी वो जगह है जहां दुआ कबूल होती, दुआ की कबूलियत का मौका है, दुआ कीजिए इस मौके पर। तब देर तक 40 आयतें पढ़े, इतनी देर तक आदमी को जैसे फजर की तिलावत होती है ना, लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है, तो वो दुआ कीजिए। तो गए हैं दुआ के लिए ना, उसका भी उसके बाद मौका नहीं समझते। खैर दोबारा आप उसमें पहले तो आप अल्लाह की हमद सना बयान करें, उसमें चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, इसी तरीके से तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर दुरूद शरीफ और दुआएं। और ये सब करके अब आप मरवा की तरफ जाने के लिए नीचे उतरेंगे, जो ढाल है वो यानी नशेब है उसकी तरफ जाएंगे, और वो बना हुआ है पूरा रास्ता। अब जाएं मरवा की तरफ जा रहे हैं, तो मरवा की तरफ जब जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद ही वहाँ आपको ग्रीन लाइट सब्ज सल्ली जो है ये ट्यूब लाइट नजर आएगी, और वो सुतून भी सब्ज रंग का है, ट्यूब लाइट भी सब्ज रंग की लगी हुई है। वो सब्ज रंग की ट्यूब लाइट लगी है उससे 9 फीट पहले, 6 हाथ पहले से आप जरा दौड़ना शुरू करें, बहुत तेज नहीं दौड़ होगी, दौड़ना तो कह सकेंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं कहना, और ये मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं। यहाँ से आप दौड़ेंगे और यहाँ इस मौके पर दुआ भी आई, रब्बिक फिरो वरहम व तजावज अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ुल अकरम, ये दुआ भी पढ़े और दुआएं भी। या आप जो सफा से मरवा की तरफ जा रहे हैं इस दरमियान में भी तस्बीह दुआ का एहतमाम करें, यहाँ भी दुआ कबूल होती है। अब ये दौड़ शुरू करेंगे आप तो ये दूसरी इसी तरह की ग्रीन लाइट आएगी, उसके बाद 9 फीट तक, फिर आम जैसे चलते आम रफ्तार से आम चाल से ऐसे चलते चलते आप मरवा पर पहुंचे, वो भी जरा चौड़ाई है, वहां ऊपर चौड़ाई पर पहुंच करके काबा की तरफ, वहां से काबतुल्लाह नजर आता नहीं, बीच में दीवारें आड़े हैं, वहां से आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि भाई इधर काबा है, तो काबे की तरफ रुक करके वहां भी हाथ उठा करके इसी तरह देर तक दुआएं करनी है, तीसरा कलमा चौथा कलमा दुरूद शरीफ ये सारी चीजें और दुआ। और फिर देखो ये काब आप सफा से मरवा तक आए, ये एक शौत हुआ, एक चक्कर, यहाँ ये ना समझिए कि सफा से मरवा और फिर सफा पर जाएं तो नहीं, सफा से मरवा पर एक, अब मरवा से सफा की तरफ जा रहे हैं, ये दूसरा चक्कर। अब ये यहाँ भी जाते जाते वही ग्रीन लाइट बीच में आएगी, तो वही वहां पर भी इसी तरह आपको जरा तेजी से चलना है, दौड़ना है, और फिर मरवा पर सफा पर पहुंचे यहाँ पर वही उसी तरह दुआ करनी है, ये दूसरा चक्कर पूरा हो। इस तरह फिर सफा से मरवा तीसरा, मरवा से सफा चौथा, सफा से मरवा पांचवा, और मरवा से सफा छठा, और फिर सफा से मरवा सातवा, सात चक्कर पूरे हुए। ये आपकी सही पूरी हो गई। सही के पूरा होने के बाद भी अंदर मस्जिद हराम में जाकर, अंदर मस्जिद में जाकर दो रकात पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये आपका कि सही पूरी हो गई। अब आपको तीसरा काम, दो तीन काम तो हो गए, एहराम हुआ था, तवाफ हो गया, सही हो गई, अब आखिरी काम करना है क्या, हलफ, बालों की सफाई करानी, सर मुंडवाना है या कतरवाने हैं बाल। अब वहां पर बहुत सी मरताओं बच्चे खड़े रहते हैं कैंची लेकर के, और वो बात जरा से दो बाल काट लिए तो हमारे लोग भी बात जाकर के इसी हिरस में बालों को बचाने की हिरस में जो है, बालों से मोहब्बत इतनी कि वो सब कुछ हो जाए लेकिन बाल न जाने चाहिए, ऐसा नहीं। जब आप आए हैं तो सब कुछ, तो इतनी बड़ी इबादत अदा करने के लिए, तो बालों की ऐसी मोहब्बत न रखिए कि उसको आप कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अफजल ये है कि आप सर मुंडवाएं, इसलिए कि सर मुंडाने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा दुआ फरमाई, और बाल कतरवाने वालों के लिए एक मरतबा दुआ फरमाई। इसलिए मुंडवाना अफजल है, कतरवाना चाहें तो कतरवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, आप बाल जब कतरवाएं तो कटे हुए बाल एक कोरवे जितने होने चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके सर पर इतने बड़े बाल हैं कि कतरने के बाद कतरे हुए कट के गिरे हुए बाल एक कोरवे जितने हैं तो आप कतरवा सकते हैं, और अगर आपके सर पर सिरे से बाल ही एक कोरवे जितने इससे कम है कि कतरने के बाद वो इतने निकलते नहीं, तो फिर तो मुंडवाना जरूरी है, कतरवाने से आप हलाल नहीं होंगे, ये मसला याद रखना। बहुत से लोग जो हैं वो बाल कोरवे से कम होते हैं कटने के बाद भी, फिर भी वो मशीन कर लगवा के कटवा के यूं समझते हैं कि हम हलाल हो गए, नहीं, ऐसा आदमी हलाल नहीं होता अगर उसके बाल कटे हुए बाल कोरवे से कम है तो। हाँ उतने हैं या उससे ज्यादा है, जैसे बड़े बड़े बाल यहाँ से लेके गए थे तो ठीक है, दो कोरवे चार कोरवे काटो ठीक। अब यहाँ वहाँ बाल काटने वाले हल्ला का जो है वो नाई की दुकान सामने मौजूद है, इस्तकबाल के लिए भी वो तैयार रहते हैं, तो बहरहाल जैसा मौका, और वहाँ आपने मुंडवा दिए कटवा दिए जो भी हुआ, ये हो गया उम्रा पूरा हो गया, चार काम हो गए। देखो ये उम्रा के अफाल थे, उम्रा में एक तो एहराम बांधा, दूसरा आपने क्या किया, तवाफ किया, तीसरा सही की, और चौथा हलक या कसर, बाल मुंडवाए या कसरवाए, ये चार काम हो गए, उम्रा हो गया। अब हज की तरतीब, आमतौर पर हमारे यहाँ से, अब देखो हज के एहराम में तीन किस्में लिखी हैं, कि इफराद, तमत्तु, किरान। अब ये क्या है, दरअसल ये है दो इबादतें हैं, एक तो उम्रा है और एक है हज, और हज के लिए भी शरीयत ने कुछ महीने, जिन महीनों को हज के महीने कहा जाता है, ये पहली शव्वाल, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, ये तीनों हज के महीने कहलाते हैं। एक तो है अशहूरे हज, हज के महीने तो ये तीन, और एक है अय्याम हज, हज के दिन, वो तो पांच, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं, या फिर नवीं को तेरहवीं को शामिल कर, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं, तो नवीं से लेकर के तेरहवीं तक ये जो है हज के दिन है, अय्याम हज, और वो है अशहूरे हज। तो हज के एहराम की तीन किस्में बयान की, एक तो वो आदमी जो यहां से हज के लिए गया और उसने यहीं से बांधा एहराम का ही कहा हज का, अब वो हज से फारिग हुआ, जाहिर है जब तक के हज के दिन नहीं आएंगे वहां तक एहराम खुलने वाला नहीं है, हज का एहराम बांधा है अकेले हज का, हज से जब फारिग हुआ तो हज के महीने दिन भी पूरे हो गए, हज के दिन पूरे होने पर महीने वसूल हज भी जो कहा गया तो वो पूरा दिन हिज्जा का पूरा महीना नहीं है, यही 5 दिन। अब उसके बाद उमरा भी करेगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यूं कहा जाएगा कि गोया उसने ये शव्वाल से लेकर हज तक फकत क्या किया, हज किया, उमरा साथ में नहीं है। इसको क्या कहते हैं, इफ़राद, अकेला हज। अब हज के बाद उमरे करता रहे ना तो अभी उसको तमत्तु कहेंगे नहीं, याद रखना। तमत्तु तो उसी वक्त कहलाएगा जब आपने पहले यानी हज से पहले क्या किया हो, और वो भी कब किया हो, पहली शव्वाल के बाद। रमजान में उमरा करने गए थे फिर वापस आ गए और अब जाएंगे हज के लिए रखे तो भी तमत्तु नहीं, तो भी इफ़राद कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो बहरहाल एक तो अकेले हज का एहराम, दूसरा ये है कि एक आदमी जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ जो होता है वो यही है कि हाजी लोग जब जाते हैं तो यहाँ से बांधते हैं उमरे का एहराम, वहाँ जा करके उमरे से फारिग होकर वो हलक करा के एहराम क्या कर डाला, खोल डाला। अब हज के दिन आने में देर है, अभी कोई आदमी अभी शुरू के प्लेनों में जाएगा, शुरू की फ्लाइट में जाएगा तो अभी हज को तो 1.5-2 महीने की देर, अब यहाँ जा करके वो उमरा करके आराम खोल डालेगा, वहां रहेगा या फिर वहां से मदीना मुनव्वरा जाएगा। बहरहाल अभी हज में तो बहुत देर है, वहां तक वहां ठहरे हुए हैं। जब हज के दिन आएंगे तो 8वीं ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा से मीना जाना होता है तो उससे पहले वो क्या बांधता है, हज का एहराम बांधता। तो अब ये उमरा किया था जाते वक्त और वो हज के दिन जब आए तो हज का एहराम बांधा, तो उसी को क्या कहते हैं, तमत्तु। ये उमरे का अलग एहराम बांध के उमरा कर लिया और हज के दिन जब आएंगे तो हज के लिए अलग एहराम बांधा जाएगा। दोनों अलग अलग करके किए, दोनों काम किए हज के दिनों में, उम्र हज के महीनों में, तो इसको तमत्तु कहते हैं। देखो एक ही काम किया, कौन सा वो कह रहा था, वो इफ़राद कह रहा है। और अगर दोनों के लिए यहाँ से गया जिस वक्त तो यहीं से एहराम में ये नियत की कि मैं हज भी और उमरा दोनों का एहराम बांधता, दोनों को बिल्कुल कंबाइन कर लिया उसने, तो इसको किरान कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अफजल है हमारे यहाँ, लेकिन इसकी जो है इतने दिनों से सब्र करना और ये मसला रह जाता है, तो ये किरान का कहलाता है। एक ही एहराम से एहराम में क्या कर लेना, दोनों। तो वहां क्या होगा फिर, किरान में क्या होता है, यहां से जाके जब उमरा करेंगे तो सही करने के बाद बाल मुंडाए नहीं जाएंगे, यानी एहराम खुलेगा नहीं सही करने के बाद, क्योंकि अभी आपने दोनों एहराम बांधे हैं साथ, तो जब तक के दूसरा यानी हज न कर ले वहां तक एहराम खुलेगा नहीं, किरान में ये होता है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि आपने उमरा कर लिया, उमरा करके उमरे का एहराम खोल दिया, अब हज के जब दिन आए तो हज का एहराम बांधेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, तमत्तु, इसी को तमत्तु कहते हैं। अब तमत्तु में क्या होगा, अब आप वहां 8वीं ज़िलहिज्जा को फजर के बाद वहां मक्का मुकर्रमा से मीना के लिए जाएंगे, उससे पहले पहले आपको एहराम बांधना है, काय का, हज का। हज का एहराम वहीं बांधा जाता है हरम में, हाँ मक्के वालों के लिए यही है। तो अब आप भी वहां हैं, आप हज का एहराम बांध लें, मतलब गुसल उसल करके चादरें पहन लीजिए, अपने क़यामगाह पर जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ भी अगर 2 रकात पढ़ के इसी तरह नियत कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिर ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, अल्लाह मैं हज की नियत कर रहा हूँ उसको मेरे लिए आसान कर दिए, मेरी तरफ से उसको कबूल कर लीजिए, और लब्बैक पढ़ ली, हज का एहराम चालू हो गया। वैसे अगर क़यामगाह के बजाय वहाँ से तैयार होकर चादरें पहन के हरम में आ गए, मस्जिद हराम में, क्योंकि मस्जिद हराम में आने के पर मस्जिद हराम का तहिया तो तवाफ है, इसलिए पहले तवाफ कर लो, ये तो नफल तवाफ, तहिया का तवाफ हुआ, उसके बाद जो है आप क्या कर लें, अब 2 रकात पढ़ करके नियत करें, किसकी, हज की, हज की नियत की और तल्बिया पढ़ा, आपका एहराम क्या हो गया, चालू हो गया। अब एहराम चालू हो गया, अब आपको जाना है मीना, देखो अब यहाँ हज का एहराम यहाँ बांधने के बाद अभी तवाफ नहीं, अगर आपने घर से एहराम बांधा होता, यानी यहाँ से बम्बई से हज का अकेले का एहराम बांध के गए होते तो वहां जाके आप तवाफ करते, उस तवाफ का नाम था तवाफे कुदूम, पहला था वो सुन्नत है हज के अंदर। यहाँ आप मक्के में पहले से हैं तो आप तो पहले से मौजूद हैं आने का, इसलिए ये तवाफे कुदूम उनके लिए नहीं है, आप एहराम बांध लीजिए, एहराम बांधने के बाद आप मीना के लिए रवाना हो जाइए। ये 8वीं तारीख की बात है ज़िलहिज्जा की। मीना पहुंचे फजर के बाद, ज़ोर से पहले वहां पहुंच गए तो मीना में जहां आपकी तंबू है वहां आप क़याम करेंगे खेमों में। वहां उस रोज मीना में कोई काम करना नहीं है, ऐसे ही ठहरना है। ज़ोर के वक्त ज़ोर की नमाज, असर के वक्त असर की, मगरिब के वक्त मगरिब की, ईशा के वक्त ईशा की, पूरी पढ़ें कसर पढ़ें, ये मसला बाद में बताऊंगा। अच्छा, मुसाफिर हैं कि नहीं है। बहरहाल 5 चार नमाजें हुई, फिर रात गुजारी और फिर नवी ज़िलहिज्जा शुरू हुई। नवी ज़िलहिज्जा को आप फजर की नमाज भी वहीं पढ़ेंगे, कहाँ? मीना के अंदर। अब नवी ज़िलहिज्जा हुई तो नवी ज़िलहिज्जा में फजर के बाद से तकबीर तशरीक भी शुरू हो जाती है। इसलिए वैसे तो अब तक एहराम की हालत में आप नमाज के बाद तस्बीहा पढ़ते थे, लब्बैक पढ़ते थे, अब नवी ज़िलहिज्जा को आप फजर की नमाज का सलाम फेरने के बाद पहले तकबीर तशरीक पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहि, और उसके बाद तस्बीहा पढ़िए। और फिर ये फजर की नमाज के बाद आप नवी ज़िलहिज्जा को आप जाएंगे अरफात की तरफ, बसें आएगी, बसों में बैठना है और मुजाहिदा करके पहुंचना है। अब जो है यहाँ बैठे अरफात पहुंचे, जोर से पहले अगर अरफात पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए, जल्दी सुबह ही सुबह, तो आपको वक्त मिलता है, वहाँ आराम करना चाहें तो आराम करें, जवाल से पहले आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। वैसे वकूफ़ अरफात के लिए गुसल को भी बेहतर करार दिया गया है, तो वहाँ नल भी मौजूद होते हैं, आप ऐसे ही पानी डाल लीजिए, गुसल कर लीजिए, वो अच्छा है। जब जवाल हो जाएगा, जवाल होते ही अब आप जो है जोहर की नमाज अदा करेंगे। वैसे तो वहां मस्जिद है अरफात के अंदर जिसको मस्जिद नमेरा कहते हैं, वहां इमाम आता है हुकूमत की तरफ से और वो नमाज पढ़ाता है। वो बाकायदा रियाद से आता है, मुसाफिर होता है तो वो कसर के साथ, यानी 2 रकात जोहर की और 2 रकात असर की, अगर आप मुकीम हैं तो उसके 2 रकात के बाद अपने खड़े होकर पूरी कर लीजिए, नहीं तो आप 2 रकात पढ़ लें और उसके बाद फिर जोहर के बाद असर, वहाँ अगर पढ़ेंगे तो, और अगर वहाँ नहीं पढ़ते तो फिर उस सूरत के अंदर जब अपने तंबू में अपने खेमों में पढ़नी है तो जोहर और असर मिला के पढ़नी नहीं है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जोहर और असर मिला कर पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि बादशाह या बादशाह का आदमी उसको पढ़ा रहा हो तो अपने तंबू में पढ़ेंगे तो जोर अपने वक्त पर और असर अपने वक्त पर। तो बारह सवाल होती है, आमतौर पर ये होता है कि वहाँ जाने की नौबत आती नहीं है, अपने अपने तंबुओं ही में होते हैं खेमों में, तो वहाँ आप सवाल होते ही पहले से तैयार थे, आपने अजान दी और जोर की नमाज अपने इमाम के पीछे पढ़ ली। जैसा भी इमाम अगर मुकीम है तो पूरी पढ़ाएगा, मुसाफिर है तो कसर के साथ, आप भी अगर मुकीम हैं तो इमाम के कसर के बावजूद अपनी पूरी कर लेंगे, नहीं तो साफिर हैं तो उसके साथ इमाम मुकीम है तो वैसे भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। खैर, तो बहरहाल जोर पढ़ करके अब सलाम फेर करके तलबिया भी पढ़ना है, अरे तकबीर तशरीक भी पढ़नी है और लब्बैक भी पढ़नी है, और अब आपका वकूफ शुरू, वकूफ अरफात यानी अरफात का क़याम, ये रुकना है हज का फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज हज का। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है जिक्र करना है, तिलावत है, दुआ है, मुख्तलिफ इबादतें, मुख्तलिफ किस्म की इबादतों से आप अपने इन औकात को बड़ा मामूर कीजिए, आबाद कीजिए। अब वैसे बेहतर तो ये है कि आप खुले में खड़े खड़े जो है, अगर ऊँट की सवारी है तो उस पर, या वैसे खड़े खड़े आप मशगूल हों, तो जितनी ताकत हो अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक बेहतर तो वही है, लेकिन अगर कमज़ोरी है तो आप धूप में नहीं तो साये के अंदर खड़े खड़े, और खड़े नहीं तो बैठे बैठे, नहीं तो लेटे लेटे भी अल्लाह का जिक्र करते रहिए। बहरहाल मशगूल हो जाइए इबादत, क्योंकि अभी आपने असर की नमाज पढ़ी नहीं है और असर अपने वक्त पर पढ़ेंगे आप, इसलिए जोहर के बाद जोहर की 2 सुन्नतें भी, और उसके अलावा वैसे असर पढ़ने से पहले पहले आप वहाँ उसी क़याम के दौरान, वुकूफ़ के दौरान सलातुत तस्बीह भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, दूसरी नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं, दुआ में मशगूल हो सकते हैं, तिलावत में मशगूल हो सकते हैं, जिक्र में मशगूल हो सकते हैं, ये करते रहिए, ये सिलसिला आपका जारी रहे। انفرادی طور پر دعا مانگ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا مانگ سکتے ہیں. بہرحال اس وقت ہمیں دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہو، بات چیت مجلس بازی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ رہیے. یہ بہت اہم اور گویا بڑا قابل قدر وقت ہے. پھر جب عصر کا وقت آ جائے گا تو آپ عصر کی نماز وہیں اپنے تمبو میں، اپنے خیمے میں پڑھ لیجیے، اپنے امام کے پیچھے. عصر کے بعد سلام پھیر کر کے آپ تکبیر تشریق اور لب تلبیہ. اب عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک پھر اسی طرح، لیکن اب نماز پڑھ سکتے نہیں ہیں، عصر پڑھ چکے، عصر کے بعد نفل کی اجازت نہیں. تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں ذکر وغیرہ میں، اور اس میں مشغول رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. اب اگر آپ کا معلم یا جو ہے ٹور کا آرگنائزر آپ کو یوں کہے کہ بھائی اپنی بس تیار ہے آ جاؤ، وہاں کے جو مقامی حالات مصلحتوں کا تقاضا ہوتا ہے اس لیے وہ لے جاتے ہیں گروپ سے پہلے ہی، ایک گھنٹہ پہلے، ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، کوئی بات نہیں. ابھی عرفات ہی میں ہیں، آپ عرفات سے باہر نکلے نہیں اور نکلنے دیتی بھی نہیں حکومت، دروازہ بند، وہاں بند رہتی پابندی، اتنا ہے کہ بس. مگر اس موقع پر بس میں ضرور بیٹھیں، لیکن آپ اپنے ذکر میں، دعا میں مشغول رہیں، لغویات میں، شور شار میں، کسی کو دھکے دینے میں، کسی کو تکلیف پہنچانے میں، ایسی جگہ میں تکلیف پہنچانا یہ تو بہت برا ہو جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا. بس میں بھی بیٹھ گئے تو بس میں بیٹھنے کے بعد عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وقوف پورا ہو گیا اور پھر باتوں میں ادھر ادھر میں پڑ جاتے ہیں. نہیں، بس میں ابھی تو سورج ڈوبا نہیں، ابھی تو ایک گھنٹہ دیر ہے. بس میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ وہی اپنے دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، اس میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، ذرا برابر بھی غفلت نہیں، باتوں میں نہ پڑیے ورنہ بہت نقصان ہے. اور جب غروب ہو جائے گا تو وہاں گولا چھوڑا جاتا ہے اور پھر اب بسیں چلنا شروع ہوتی ہیں. غروب سے پہلے بھی کچھ چل لیتی ہیں لیکن وہ عرفات کے میدان سے باہر نکلتی نہیں ہے. باہر تو نکلنے کا سلسلہ غروب آفتاب کے بعد، آفتاب جب ڈوبا تو آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے آپ کو، یہ تو عرفات ہے، عرفات سے چل کر آپ کو جانا ہے کہاں، مزدلفہ میں. مزدلفہ جا کر آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، وہ بھی عشاء کے وقت میں، پہلے مغرب، ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت، ایک اذان کہی گئی، مغرب پڑھی، پھر اقامت مغرب کے لیے جو کہی گئی وہی اقامت، پھر کافی ہے کس کے لیے، عشاء کے لیے بھی، دوسری اقامت وہاں نہیں، دوسری اذان بھی نہیں. بہرحال ابھی تو آپ چلے مزدلفہ جانے کے لیے، اتنا جلدی مزدلفہ آتا نہیں ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں عشاء سے پہلے پہلے، ورنہ تو بعد میں تو رات گزر جاتی ہے اور بھی آنے کی نوبت نہیں آتی. دعا کرتے رہیں، یہ بھی خاص دعا کعبۃ اللہ کو دیکھنے پر بھی، اسی لیے اہتمام کی یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق سارے افعال اور مناسک ادا کروائے اور اس کو آسان کر دے، یہ ضرور ہونا چاہیے. خیر، دوبارہ آپ عرفات سے چلے مزدلفہ جانے کے لیے، جب مزدلفہ پہنچے، اگر ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ کو نماز ابھی پڑھنی نہیں ہے، مغرب کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھنی، اس روز مغرب کی نماز پڑھی جائے گی کب، عشاء کے وقت. خیر، اب وہاں جا کر کے استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آپ عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھیں، اذان دے دیں اور اذان دے کر کے مغرب پڑھیں تین رکعت، سلام پھیر کر کے تکبیر تشریق کریں، تلبیہ پڑھیں، لیکن دو سنتیں ابھی پڑھیں گے نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، تکبیر کہنے کی، اقامت کہنے کی ضرورت نہیں، اب عشاء پڑھ لیں اور عشاء کا سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے تکبیر تشریق اور جو ہے تلبیہ پڑھ کر کے پھر پہلے سنت پڑھیں مغرب کی اور اس کے بعد سنت پڑھیں عشاء کی، وتر وغیرہ پڑھیں. اب جب فارغ ہو گئے، کھانا آیا، کوئی حاجت ہے تو پوری ہو کر کے، اب یہ نہیں کہ وہاں سو گئے، یہ رات بھی بڑی بابرکت ہے، بہت سونا تو اس کو لیلۃ القدر سے بھی اچھا افضل قرار دیا ہے، بہرحال یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس کو عبادت میں گزارنا ہے. لیکن چونکہ کچھ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اگر تقاضا طبیعت کے اوپر آرام کا ہو تو شروع رات میں تھوڑی دیر، گھنٹہ دو گھنٹہ، ڈیڑھ دو دو تین گھنٹے آرام کر لیجیے، اور صبح صادق سے دو ایک گھنٹے پہلے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، تہجد وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، دعاؤں میں مشغول رہو. اور صبح صادق جب ہو جاوے تو صبح صادق ہوتے ہی آپ اذان کہہ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں گے. فجر کی نماز پڑھ کر کے اب وہیں دعا میں مشغول ہو جائیں گے. اسی کا نام ہے وقوف مزدلفہ. واجب ہے یہ. دیکھو وقوف مزدلفہ کا وقت کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. وہاں آپ عربوں کو دیکھیں گے جو بہت سے رات میں آئے اور رات ہی رات میں روانہ ہو گئے. ان کے ہاں رات کا قیام بھی کافی سمجھا جاتا ہے. ہمارے حنفیہ کے ہاں وہ کافی نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد ٹھہرنا پڑے گا. فجر کے بعد چل بھی دیے تو وہ مزدلفہ میں چلتے رہے وہ کافی ہو جاتا ہے ٹھہرنے کی طرف سے. لیکن مطلب ایک رات کو اگر آپ نکل جائیں گے ان کو دیکھا دیکھی صبح صادق سے پہلے اگر آپ مزدلفہ کے باؤنڈری پار کر گئے اور مینا میں چلے گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا وقوف مزدلفہ چھوڑنے کی وجہ سے. البتہ عورتیں اور بوڑھوں کے لیے کمزوروں کے لیے گنجائش, باقی دوسروں کے لیے نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کا وقوف جو واجب ہے اس کا وقت کب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں ٹھہریں اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت, لوگ جا رہے ہیں تو جانے دو, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو. آپ اپنا اطمینان سے دعا میں مشغول رہیں. یہ نہیں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. ارے بھائی آئے ہو عبادت کے واسطے, پہلے پہنچے وہاں کیا دار مارنے والے, وہاں کیا لڈو ملنے والا ہے؟ کیا اطمینان سے پڑھو اور دعا میں مشغول رہو. یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں, ایک دم تیار, خوب اجالا ہو گیا ایک دم, اب دو چار منٹ کے بعد سورج نکلنے والا, اب یہاں سے چلو. ویسے اگر اس سے پہلے بھی چل دیے فجر وہاں پڑھ کر کے تو بھی وقوف ادا ہو جائے گا. اتنا یاد رکھنا, افضل یہ ہے. بارہ آپ چلے آپ وہاں سے, اب بس ہے تو بس میں, نہیں تو پیدل, یہاں سے چل کر کے آپ مینا پہنچے. مینا پہنچ کر کے آپ کو اب سیدھا جانا ہے. یہ مزدلفہ سے مینا کا جو حصہ ملا ہوا ہے ادھر کا, ادھر والی باؤنڈری, تو مینا کے دوسرے چھیڑے کے اوپر وہاں جمرات ہی شیطان جس کو کہتے ہیں جمرے اقبا, بڑا شیطان. اس دن یہ دسویں ذیلحجہ ہے, اس دن جو ہے وہاں مینا پر پہنچ کر کے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ جمرے اقبا کی, دیکھو تینوں شیطانوں کی رمی اس دن نہیں کی جاتی. پہلا جو اس کو جمرے اولا کہتے ہیں, دوسرے کو جمرے وسطا کہتے ہیں اور تیسرے کو جمرے اقبا کہتے ہیں. آج جمرے اقبا ہی کی ایک ہی کی رمی. اب یہ مزدلفہ میں سے آپ کو کنکریاں بھی لے لینا ہے رمی کے واسطے, لے لیجئے, دھو کر کے بوتل میں پیک کر لیجئے, یا جو ہے اپنے ساتھ تھیلی ویلی لے گئے ہیں تو اس میں ڈال کر کے رکھ لیجئے جو بھی ہو. اور اب وہاں جمرے اقبا پر جائیں گے آپ, تو اب وہاں اپنے ہاتھ میں اپنی کنکریاں لے لی ہو گئے. اب یہ وہاں جو پرانے تجربہ کار ہیں ان سے مشورہ کر کے کہ بھائی یہ موقع اور یہ وقت مناسب ہے یا نہیں, اس لیے کہ یہی خاص جو ہے ہم ہمی کا اور جو ہے جو زیادہ جو ہے کشتی لڑنے کا وقت یہی, بڑے بڑے بہادروں کا پستا پانی ہو جاتا ہے, اس لیے مناسب وقت دیکھ کر کے کہ زیادہ بھیڑ بھی نہ ہو آپ جائیں گے. وہاں پہنچ کر کے آپ یہ رمی کریں گے. سات کنکریاں ہیں, ہر کنکری یہ یوں کر کے کھڑے ہو کر کے یہ انگوٹھے اور انگلی میں یوں اور ہاتھ یوں اونچا کر کے یوں مارے. اب یہ جو جس کو جمرے اقبا کہتے ہیں, جس کو شیطان, وہاں ایک ستون سا بنا ہوا ہے اور چاروں طرف ایک حوض سا بنا ہوا ہے. کنڈی کنڈی گجراتی میں کہتے ہیں, ایک ستون اور چاروں طرف کنڈی بنی ہوئی بڑی حوض بنا ہوا. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو ستون بنا ہوا اس کی جڑ میں آپ کی کنکری پڑنی چاہیے. ستون کو لگنا بھی ضروری نہیں, اس طرف ہے کہ اس کی جڑ, ستون کو لگ کے پڑی یا بغیر لگے ہوئے بھی اندر جڑ میں پڑ گئی تو آپ کی رمی کیا ہو گئی؟ ادا ہو. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ستون ہے, اسی کا نام شیطان. اور بعض تو باقاعدہ یہی سمجھ کر کے یہ خالی چھوٹی چنے کے برابر کنکری نہیں بلکہ بڑے بڑے پتھر یا چپل جوتے لے کر بھی مارتے ہیں, وہ شاید وہ بعض تو وہاں چڑھ جاتے ہیں. تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں شیطان پر سوار ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان پر سوار, سنت کے خلاف کروا رہا ہے, سنت طریقہ چھٹوا رہا ہے. تو بہرحال یہاں بھی یہ تو جو ہے ایک علامت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی. یہ علامت, وہاں انہوں نے उसकी बात नहीं मानी और पड़ा तो धंस गया जमीन में। तो ये एक अलामत है। दोबारा नहीं आपको सात कंकरियां माननी है। पहली कंकरी जब मारेंगे अल्लाह अकबर बोल करके रहमन लिशैतान व रिजन लिर्रहमान यूं बोल करके मारेंगे। अब तक आप हज का तलबिया लब्बैक पढ़ते रहे, ये पहली कंकरी मारते लब्बैक पढ़ने का सिलसिला क्या हो जाएगा? खत्म। दूसरी मारी, तीसरी मारी, अलग अलग मारनी है। ये सातों लेके एक मुट्ठा मार दिया वो काफी नहीं, वो एक कहलाएगी। बाद लोग भीड़ भाड़ में तंग आकर के घबरा करके जो है ना वो मार के चले आते हैं, समझते हो गया, सही नहीं। अगर इस तरह एक में ये कर ली है तो दम वाजिब होगा, या तो फिर जाकर के दोबारा मारे। तो बहरहाल आज सात कंकरियां, अगर चार मारी और तीन छूट गई तो इन तीन में हर एक के बदले में आधा आधा सा यानी सत्तर फितर जितना गेहूं आपको क्या करना है, सत्ता करना है क्या नहीं? और अगर चार से कम मारी तो आपको पूरा दम देना पड़ेगा। यानी उस दिन सात कंकरियों में से ज्यादातर हिस्सा मार दिया तो दम वाजिब नहीं होता। अगर तुम्हें एक कंकरी वैसे पूरी मारो और कंकरी मारने के बाद फिर आप वहां से हटे, क्योंकि आपका तमत्तु है और तमत्तु के अंदर जानवर जबा करना भी क्या है, जरूरी कुर्बानी। ये कुर्बानी का लफ्ज बोलते हैं, असल तो ये हदी है। क्या है? कुरान और हदीस में उसके लिए लफ्ज हदी इस्तेमाल किया गया है। ये हदी यानी ये तमत्तु जो आपने किया तो अल्लाह ताला ने आपको इस सफर में उमरे के बाद हज का भी मौका दिया, एक सफर में अल्लाह ताला ने दो दो इबादतें अदा करवाई, उसके शुक्राने में आप जानवर जबा करें, बकरा या एक बड़े जानवर का सातवां हिस्सा, तो ये भी वाजिब है। देखो ये शैतान को जो जमरे अकबा को कंकरियां मारी ये भी वाजिब। अब इसके बाद आप जानवर जबा करेंगे वो भी वाजिब। अब ये जमरे अकबा यहाँ और अब फिर जानवर जबा करने के लिए जाना है आपको कुर्बान का, वो फिर उलट उतना ही दूर, अब तो और दूर कर दिया। वैसे सबका जाना जरूरी भी नहीं है, आपके तजर्बाकार साथी हों, आपके पूरे काफिले में दो चार पुराने आदमी हैं और वो एतमाद वाले हैं, उनको आप पैसे दे दें और वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर लें वहाँ और आकर इत्तिला दे दें तो काफी। भरोसे को नहीं, आजकल अब ये आजकल एक व्यापार हो गया, बाकायदा कारोबार हो गया बहुत से लोगों का, लोगों के पास से कुर्बानी के पैसे लेते हैं, यूं कहते हैं हमने करवा ली और वो अपनी जेब में रख लेते हैं। बहुत ऐसे पकड़े भी गए और माल, इसलिए जब तक के पूरा अपना मुकम्मल एतमाद वाला ना हो वहाँ तक ये जो है इस तरह वहाँ के रहने वाले बहुत से होते हैं, किसी पर भरोसा मत कर। अपने घर का एक आदमी, चार पांच आदमी है तो एक को भेज दो ताकि उसकी आंखों के सामने ये हो जाए। तो बहरहाल ये कुर्बानी जानवर जबा करना। एक दूसरी कुर्बानी है ईद वाली कुर्बानी, ये मसला भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी तो ये हज का ये चल रहा है तो ये हदीस ये कुर्बानी की। अब उसके बाद आपने ये दसवीं तारीख को मीना पहुंचकर पहला काम कंकरी मारने का किया, उसके बाद जानवर जबा किया, अब तीसरा काम करना है वही हलक, सर मुंडाओ या बाल हैं बड़े हैं तो कतरवा भी सकते हैं। ये तीन काम हैं और तीनों में तरतीब जरूरी है, तरतीब से करना है। पहले आप कंकरी मारेंगे, नंबर दो पर आप जानवर जबा करेंगे और नंबर तीन पर जो है वो आप बाले। अगर आगे पीछे कर दिया तो इसमें दम वाजिब है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह यही फरमाते हैं। लेकिन अब इस जमाने में मौजूदा हालात की वजह से जो वहां मुश्किलात पेश हैं और उसकी वजह से बहुत सारी रुकावटें हो जाती है, तो हमारे जो है उलमा ने गुंजाइश दी है कि अगर इस तरतीब की रियायत न हुई तो दम में। लेकिन फिर भी देखो भाई, इस गुंजाइश की वजह से अपने आप को जहाँ गुंजाइश पर अमल करने के बजाय इस तरतीब की रियायत करना क्या है, जो लोग वाजिब नहीं कहते उनके नज़दीक सुन्नत तो है ही। और जब इतनी बड़ी इबादत जिंदगी में एक मरतबा की जा रही है और बाद में मौका मिले न मिले तो सुन्नत तरीके की रियायत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तरतीब का लिहाज करो। अब वहाँ एक मसला और आता है, वहाँ बैंक है, वहाँ सरकारी इंतज़ाम है कि वहाँ आप पैसे दीजिए, वहाँ से आप रसीद लीजिए, कभी आप वक्त दीजिए कि फला वक्त तो वहाँ आपका वहाँ जानवर जबा हो जाएगा। वहाँ अगर ये कर लिया है तो चलेगा या नहीं, एक मसला लोग पूछते हैं। तो वहां का भी मसला यही कि भाई आप अपने हिसाब से, आपका अंदाजा ये है कि दसवीं जिलहिज्जा को, दसवीं तारीख को मैं इतने बजे तक, 10 बजे तक कंकरी मार के क्या हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा। तो फिर उस वक्त अगर आप वहां यूं कह दें कि भाई मेरा जानवर दसवीं तारीख को 10:30 बजे, वो वक्त भी देते हैं, तारीख भी देते हैं, अगर से उसकी रियायत करते हैं कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, बाकी ये होता है इतने बजे, और इत्मीनान हो जाए उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना सर मुंडवाना है। ये तीसरा काम, तीन चीजें हो गई। अब ये तीन काम करके अब आप जाएंगे मक्का मुकर्रमा मीना से, और वहां तवाफ जियारत करना है। ये तवाफ जियारत फर्ज है, रुकना है, हज के अंदर दो रुकना है, वकूफ अरफात और तवाफ जियारत। अब देखिए जब आपने सर मुंडा दिया, यानी 10वीं तारीख को आपने पहला काम बड़े शैतान को कंकरी मारी, जानवर जबा किया, सर मुंडाया, सर मुंडाते ही ये सारी चीजें जो हराम थी आपके लिए क्या हो गई, हलाल। सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं, सर डांप सकते हैं, चेहरा डांप सकते हैं, नाखून वगैरह सब कतरवाओ। सिर्फ बीवी हराम, बीवी के साथ सब, जो नौजवान बीवियों के साथ जाते हैं उनको जरा बड़ा एहतियात की जरूरत है, ये बहुत बेहतियाती में मुब्तला हो जाती। बीवी हराम है, अभी वो हलाल नहीं हुई, जब तक तवाफ जियारत से फारिग नहीं हो गए वहां तक बीवी के साथ सोहबत करना हलाल नहीं। अब आप जाएंगे तवाफ करने के वास्ते, वहां जब जाते हैं तो थके हारे होते हैं, तो तवाफ करने के बाद वहां भी भीड़ भाड़ बहुत होती है, तवाफ जियारत के लिए वो भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से भीड़ भाड़ में होता है। तो बहुत से कहते हैं अभी जरा भीड़ है, फिर जरा कमरे हुआ हमें, और वो कमरे आराम में गड़बड़ कर डालते हैं बात, फिर बाद में मसले पूछने के लिए आते हैं कि तवाफ जियारत करने के लिए आए थे और बीवी से सोहबत कर ली। इसलिए भाई बहुत एहतियात की जरूरत है। तो बहरहाल ये तवाफ जियारत के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे और वहां तवाफ कर लिया आपने। तवाफ करने के बाद अब चूंकि इस तवाफ के बाद आपको सही करनी है, हज की सही वाजिब है, और ये तमत्तु वाला आपका हज है, तो तमत्तु वाले हज में सही जो है वो तवाफ जियारत के बाद करना अफजल है, अफजल। और आप सही करने वाले हैं इसलिए इस तवाफ में आप जो हैं वो रमल करेंगे, क्या करेंगे, रमल। और एहराम अगर उतार चुके हैं, यानी हलक वलक करा के आए थे और सिले हुए कपड़े पहने, तो इस्तिबा का तो सवाल पैदा नहीं होता, ये नहीं कहा आस्तीन चढ़ा नहीं, आप ऐसा नहीं करते, वो तो चादर ही में इस्तीफा तो होता। और अगर अभी हलक करा के हराम खोला नहीं था, उसी चादरों में आए हैं, तो इस्तीफा भी करेंगे, वरना इस्तीफा के बाद रमल तो करना ही है। और ये तवाफ पूरा करके आप क्या करेंगे, सही करेंगे, वो तरतीब सवाब तवाफ की सही की हुई है जो मैंने उम्रे में बताई थी। खाली मसला ये इस्तीफा का आता है, रमल तो उसी तरह करना है, इस्तीफा करें कि ना करें, तो हलक कराने के बाद सिले हुए कपड़े पहन चुके हैं तो इस्तीफा करने की जरूरत नहीं, अगर हलक कराया नहीं और सिले हुए कपड़े अभी पहने नहीं बल्कि चादर ही हैं तो इस्तीफा भी करेंगे। और तवाफ के बाद आप क्या करेंगे, सही करेंगे, ये सही वाजिब है हज के अंदर। अब यहाँ सही की बात आती है, सही के लिए अफजल वक्त तमत्तु करने वाले के लिए यही है, लेकिन अगर कोई आदमी ये सोच करके कि 10वीं तारीख को मुज़दलिफा से मीना आ करके वहाँ शैतान को कंकरियाँ मारना और फिर कुर्बानी करना और फिर हलक कराना, फिर आकर के मक्का मुकर्रमा आकर के तवाफ़े ज़ियारत करना, ओ थके हारे, और उसके बाद सही करना बड़ा मुश्किल, इसलिए कोई आदमी पहले से सही करना चाहे, पहले से, अब ज़रा फिर पीछे लौटो 8वीं तारीख को जब आप मीना जाने के लिए निकले थे एहराम बांध कर, तो आप उस वक्त अगर एहराम बांध कर सही कर लें, सही करना चाहें, तो फिर आपको तवाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सही अकेली नहीं की जाती, सही के लिए जरूरी है कि उससे पहले क्या होना चाहिए, तवाफ होना चाहिए। तो वो तवाफ नफल तवाफ है, वो कोई हज के अंदर का तवाफ नहीं है, नफल तवाफ है, मगर उस तवाफ में भी वही इस्तिबा, अगर एहराम की चादर है तो इस्तिबा रमल करेंगे और सही करेंगे, उस सूरत में फिर तवाफ जियारत के बाद सही करने की जरूरत नहीं है, हो गई सही, सही एक मरतबा होती, सही में नफल नहीं है, तवाफ में क्या है, नफल है। बहुत से लोग सही में भी भागने दौड़ने उधर चले जाते हैं, نفل طریقے سے طواف تو ہوتا ہے، صحیح تو وہی جو ایک مرتبہ ہوتی. خیر بات طواف زیارت کے بعد صحیح تھی، صحیح کر کے آپ پھر مینا میں واپس آ گئے. ویسے کہنے کو تو یہ سب بہت آسانی سے بول دیا گیا کہ بھائی جمرے اقبا کی کر لی اور جانور ذبح کر لیا، حلق کرا لیا، طواف زیارت بھی ہو گیا، رمی بھی ہو گئے، مینا بھی واپس پہنچ گئے. لیکن بہرحال یہ جو جا کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، بہرحال اگر ہو جائے کسی کے لیے آسانی سے تو بڑا خوش قسمت. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہر ایک کے لیے اس طرح آسان کرے ہر جانے والے کی سنت کے مطابق. باقی یہ ہے کہ اگر دسویں تاریخ کو آپ نے شیطان کی کنکری ماری لیکن ابھی جانور ذبح کرنے کی نوبت آئی نہیں، واہ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی اور ادھر قربان گاہ بند ہو گئی اور وہاں بھائی اب تو جانور کل ہی ذبح ہوگا، تو جانور کل ہی ذبح ہوگا تو اب سر بھی مڑا سکتے نہیں اس کا انتظار. اب جانور بھی نہیں ذبح ہوا، سر بھی نہیں مڑایا، لیکن ابھی وقت تو ہے، تو اب آپ ابھی یہ دونوں کام کیے بغیر بھی مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنا چاہیں تو کر سکتے. ویسے طواف زیارت میں وہ ترتیب سنت کون وہ تین کام کرنے کے بعد کرنا، لیکن اب یہ ظاہر حالات کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، تو آپ ابھی کل کا انتظار کیے بغیر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں تو طواف زیارت کے لیے وقت دسویں، گیارہویں اور بارہویں تین ہی دن. اس کے بعد اگر لیٹ کریں گے تو دم دینا پڑے گا، بارہویں کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارت سے فارغ ہو جانا ہے. تو بہرحال اگر دسویں ہی کو جانور بھلے ذبح نہیں ہوا لیکن موقع تھا تو آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، طواف زیارت کر لیا، صحیح بھی کر لی، پھر مینا آئے اور دوسرے دن پھر جانور ذبح کر کے آپ نے حلق کرایا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. جو جاننے والے ہیں وہ آپ کو اس سلسلے میں بتائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا آج کے اندر جو واقعتاً صحیح طریقے سے مسائل جانتا ہے اسی پر اعتماد کرنا. وہاں بہت سے لوگ جو ہیں بن بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں اور پھر ذمہ داری بڑی، ضرورت تو یہ ہے کہ بھائی جیسے کنکری مارنے کی بات، کنکری مارنے کا مسئلہ کہ بھائی تمہاری کنکری میں مار لوں گا، بتاؤ تم کائے کو تکلیف کرتے ہو، میں تمہاری طرف سے مار لوں. یہ کنکری میں مارنے میں دوسرے کو وکیل بنانا یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو کون وکیل بنا سکتا ہے؟ جو آدمی اتنا بیمار ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، تو وہ دوسرے کو کنکری مارنے میں وکیل بنا. باقی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اب وہ دوسرے کو کہہ دے میری طرف سے کنکری مار دیجیے، وہ دوسرا مار بھی دے تو ابھی اس کی رمی ادا نہیں ہوگی اور دم واجب ہوگا. یا ایسا بیمار ہو یا کہ بیماری کے بعد چل کے وہاں جا سکتا نہیں اور سواری ملتی نہیں ہے تو دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. تو بہرحال اب یہ طواف زیارت صحیح کر کے آپ دوبارہ مینا لوٹ آئے دوسرے دن گیارہویں تاریخ کو، اب مینا ہی میں آپ کو قیام کرنا ہے اور آج مینا میں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو آپ کو کنکریاں مارنی ہیں. لیکن اس کا وقت صبح سے شروع نہیں ہوتا، دیکھو دسویں تاریخ کو تو وقت شروع ہوتا ہے صبح سے، آپ جب ماں مینا پہنچے تو طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کا وقت جو ہے وہ مستحب وقت ہے دسویں کو. پہلے دن جس وقت جمرے اقبا کی اکیلی کی رمی کی جاتی اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے وہ جائز وقت، اور غروب سے لے کر کے دوسرے دن کی صبح صادق تک. دیکھو ویسے تو اسلامی اس میں حساب میں یہ رات آنے والے دن کے تابع سمجھی جاتی ہے، لیکن حج میں یہ رات اگلے گزشتہ دن کے تابع مانی گئی. تو اب یہ دسویں کے بعد کی جو رات ہے اس میں بھی آپ جمرے اقبا کی رمی کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ وقت ہے، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں کہا ان کی کمزوری کی وجہ سے، اور آج کل بھیڑ کا جو حال ہے اس لیے مردوں کے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے. آپ اب دوسرے دن کی بات آئی گیارہویں تاریخ کو، گیارہویں کو آپ تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے، لیکن اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال اس لیے آپ صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال تک تو آپ کو وہیں اپنے خیموں میں رہنا ہے، وہاں دعا میں آرام میں جو بھی ہو تلاوت میں مشغول رہیے، اور پھر جب زوال ہو جائے فجر زور سے فارغ ہو جائیں تو آپ رمی کے لیے جائیں، لیکن وہاں پر بھی وہی تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر کے کہ مناسب ابھی وقت ہے یا نہیں، ایسا نہیں کہ اجلت میں پہنچ گئے اور وہاں جو ہے دب دبا گئے، ایسا نہیں. دوبارہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے وقت زوال. آپ جب جائیں گے وہاں رمی کرنے کے واسطے تو آج تینوں کی رمی کرنی ہے. پہلا شیطان جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں, وہاں آپ جائیں گے تو سات کنکریاں اس کو مار, اس کو رمی کرنے کے بعد وہاں رمی میں بولیں گے تو وہی اللہ اکبر رغمن للشیطان وریزن للرحمن, ہر کنکری پر اس طرح بولنا ہے. اور ساتوں کنکریوں مارنے کے بعد وہاں سے ذرا ہٹ کر کے دعا کیجیے. یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر بیچ والا شیطان جو مرا وہاں پہنچے, وہاں بھی سات کنکریاں اسی طرح اونچے ہاتھ کر کے ماری, اور پھر وہاں سے بھی فارغ ہو کر ذرا ہٹ کر کے دعا میں مر, یہ بھی دعا کی قبول ہونے کی جگہ ہے. پھر تیسرا جس کو کل بھی مارا تھا اگلے دن جمر اقبا, اس کی کنکڑیاں مار کے یہاں دعا نہیں کرنی, آپ واپس آ جائیں گے اپنے تمبو میں اپنے خیموں. یہ گیارہویں کی بات ہے. بارہویں کو بھی وقت جمری رمی کا وہی ہے. کون سا؟ زوال کے بعد. آج بارہویں کو چونکہ لوٹنے کا دن ہے پہلا, تو بہت سے لوگ زوال سے پہلے ہی وہاں جانا شروع ہو جاتا ہے اور کنکڑیاں مار کے وہی سمجھتے ہیں اپنے خیال سے کم جانا جلدی پہنچ جا. تو اگر زوال سے پہلے کنکری ماری ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ابھی فجر کی نماز پڑھ لے صبح صادق سے پہلے, تو جیسے ابھی فجر کی نماز پڑھ لے گا تو اس سے ذمہ بری نہیں ہوگا, فرض کی نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے زوال سے پہلے مار لی تو وہ رمی صحیح نہیں ہے, دم واجب ہوگا. یا تو پھر زوال کے بعد مارے دوبارہ تو ٹھیک, ورنہ تو نہیں. بارہ زوال کے بعد جب تک زوال نہ ہو وہاں تک نماز. اور چونکہ اس دن سب کو جلدی ہوتی ہے اس لیے آپ فوراً نہ جائیے, ورنہ وہاں ذرا بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے, حادثات جو پیش آتے ہیں وہ اسی دن اس میں عام طور پر. تو بارہ زوال کے بعد موقع دیکھ کر کے جائیے یا عصر کے بعد, عصر مغرب تک. اب وہاں آج بھی اسی طرح سات تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں. تینوں کو فارغ ہونے کے بعد مغرب سے یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ منا کے حدود کو چھوڑ دیجیے. یہ یعنی تیسری بارہویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا کے حدود کو چھوڑ دیں, یہ بہتر. اگر آپ کو جانا ہے تو ٹھہرنا ہے تو بہت اچھی بات. اور اگر غروب آفتاب ہو گیا تو اب جانا مکروہ لکھا ہے, اب بھی جا سکتے ہیں لیکن مکروہ. اب غروب آفتاب کے بعد, لیکن اس میں بھی وہی بات کہ اس وقت حالات کے پیش نظر جیسے وہ رات کی رمی عورتوں کے علاوہ کے لیے مکروہ کہی تھی مکروہ تنزیہ, لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے مردوں کے لیے بھی مکروہ رہی نہیں, ایسے چھوڑنے کے مسئلے میں بھی لکھا ہے کہ گنجائش ہے. بہرحال آپ غروب آفتاب سے پہلے مار کے ہر گھر مینا کے حد کو چھوڑ دیں تو بہت اچھا, نہیں تو اس کے بعد بھی چھوڑنا چاہیں تو گنجائش ہے, چھوڑ سکتے ہیں مینا مار, اور نہیں تو واپس آ جائیں. اور اگر صبح صادق ہو گئی وہاں کہاں مینا میں اور تیرہویں تاریخ شروع ہو گئی, تو اب تو تیرہویں کی رمی کیے بغیر آپ یہاں سے جا سکتے نہیں. تیرہویں کی رمی تو صبح صادق کے بعد بھی مکروہ ہے وقت, لیکن مار سکتے ہیں. وہاں بھی افضل وقت جو ہے وہ زوال کے بعد پھر مار کر کے آپ مکہ مکرمہ وہاں جا سکتے ہیں. یہ تین رمی جو ہوئی دسویں تاریخ کو جمرہ اقبا کی فقط, اور گیارہویں اور بارہویں کو تینوں کی, اور تیرہویں کو بھی اگر ہیں تو تینوں کی. یہ چار دن رمی ہے, تین دن تو ہے ہی کنٹینیوس, چوتھے کے اندر رہے تو کرنا ہے. یہ تینوں دن کی رمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک دن کی رمی بھی آپ نے چھوڑ دی, پہلے دن سات کنکریاں ہیں نہیں کی, یا زیادہ اکثر کنکریاں نہیں ماری, تین ماری چار چھوڑی, دو ماری پانچ چھوڑی, تو دم واجب. دوسرے دن تینوں کی رمی ہے, ہر ایک کی ساتھ ساتھ ملا کر کتنی کنکریاں ہوتی, 21. تو 21 میں سے اگر آپ نے جو ہے اکثر یعنی 11 مار لی تو دم تو اب واجب نہیں, 11 مار لی 10 چھوڑ دی تو ہر ایک پر 10 میں سے ہر ایک کا آدھا آدھا, اور اگر اکثر چھوڑ دی تو دم واجب. دوسرے دن قضا بھی کر لیں, لیکن قضا کرنے سے دم ثابت ہوتا نہیں. تیسرے کا بھی اسی طرح, एक दिन की छोड़ने से भी दम वाजिब और तीनों दिन की छोड़ दी तो भी एक ही दम वाजिब, ये याद रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी यूं सोचे कि एक दिन की छूटी अब तो दूसरे दिन की भी दो की छोड़ दो ना, अब दम तो एक ही देना है। ये जो है ये गुनाह की बात है। दम देने से गुनाह माफ होता नहीं, उसके अलग तौबा करना पड़ती है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जो आदमी सोचता है तो उसका हज हज मबरूर नहीं रहता। एक तरफ तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज मबरूर अता फरमाए, तो हज मबरूर का मतलब ये है कि ऐसा हज जिसमें कोई गुनाह न किया हो और कोई वाजिब और कोई ये चीज छोड़ी छोड़ी है, तो फिर वो हज मबरूर, कोई जिनायत न की हज एहराम के खिलाफ, ये तो जिनायत होगी, तो फिर हज मबरूर नहीं रहा। इसलिए जो लोग यूं सोचते हैं कि दम दे देंगे हो कर लो, तो ये बहुत गलत नजरिया है और ये गोया बड़ी बेवकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, कोशिश यही हो कि सुन्नत के मुताबिक पूरा अमल हो। बहरहाल 12वीं या 13वीं को जब भी हुआ, अब आप मक्का मुकर्रमा आए, अब मक्का मुकर्रमा आकर के आप ठहरे हुए हैं, जब तक मक्का में क्याम है जब भी मौका मिले आप तवाफ नफल तवाफ करते रहे। तवाफ का तरीका वही है बस, इस्तिबा और अमल आपको करना नहीं है, बाकी 7 चक्कर करके फिर दुआ और फिर इसी तरीके से 2 रकात और फिर जमजम, ये सब करना है। और जब आप घर लौटने का वक्त आवे या मदीना मुनव्वरा अभी तशरीफ नहीं ले गए तो वहां जाने का वक्त आए, कब दोबारा मक्का आना नहीं है, तो अब आखिर में एक तवाफ करना है जिसको कहते हैं तवाफे, ये भी वाजिब है। तो आप जिस रोज रवाना होने वाले हैं रवानगी से पहले आखिर में तवाफ कर लीजिए, और वो गोया बड़े दर्द के साथ और जुदाई का गम हो तबीयत के ऊपर, क्या अल्लाह ताला के घर से जुदाई हो रही है। अगर किसी वजह से लोग यूँ समझते हैं कि तवाफ विदा करने के बाद नमाज, उसके बाद कोई नमाज का वक्त आता है तो कहते अब तो हरम में नहीं जा सकते, तवाफ विदा कर लिया, ऐसा सही नहीं। हरम में जाके नमाज पढ़िए, तवाफ भले आप कर चुके हों, बल्कि उसके बाद अगर किसी वजह से रवानगी नहीं हो पाई और 1-2 दिन रहना पड़ा तो दूसरे तवाफ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आखिर में फिर वही तवाफ विदा हो जाएगा जो आखिरी है, वही हो गया तवाफ। तो बहरहाल ये हज पूरा हो गया आपका, तवाफ विदा ये आखिरी अमल था उसका, और फिर मदीना मुनव्वरा का सफर है तो फिर रास्ते में दुरूद शरीफ की कसरत का एहतमाम करें, और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर अपनी क़यामगाह पर पहुंचने के बाद गुस्ल वगैरह से फारिग होकर के सफ़ेद कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद नबी में हाजिरी का, तो ऐसे जब मदीना मुनव्वरा जाने की नीयत हो तो मस्जिद नबी में हाजिरी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी दोनों की नीयत करें, बल्कि बाज़ों ने कहा रोज़े अक़दस पर हाजिरी की नीयत करें फ़कत, बहरहाल दोनों की या एक की नीयत कर ली। वहाँ पहुँचने के बाद गुस्ल वगैरह से फारिग होकर सफ़ेद कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर अब मस्जिद नबी में जब जा रहे हैं तो बाबे जिब्रील से दाखिल हो या फिर जिस दरवाजे से भी आसान हो अंदर जाकर अगर मौका हो और आसानी से मैसर हो तो रियाजुल जन्ना व एक खास मकाम है मस्जिद नबी में, वहाँ जाकर के आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़िए, वहाँ मौका ना हो तो जहाँ भी जगह मिल जाए, और उसके बाद फिर रोज़े अक़दस पर हाजिरी के लिए सलाम पेश करने के लिए वहाँ जाइए। हाँ जो मुआजहा शरीफ यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने जो जाली वाला हिस्सा है उसको मुआजहा शरीफ बोलते हैं। तो वहाँ 3 ये हैं ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक पर दोनों तरफ की किनारों के ब्लॉक पर भी 2-2 सुराख से बने हुए हैं, बीच वाला ब्लॉक है उसमें 3 सुराख बने हुए, एक बड़ा और 2 छोटे, वही असल है। बड़ा वाला सुराख जो है उसके बिल्कुल सीध में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और गोया आपका चेहरे अनवर पड़ता है, और बाकी 2 सुराख हैं उनके सीध में हजरत अबू बकर और हजरत उमर के चेहरे पड़ते हैं उनकी खबर। तो बहरहाल पहले आप उसी बड़े वाले सुराख के इस तरफ जरा तिरछे इस तरह खड़े हुए जैसे कि आप यूँ तस्वर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे अक्दस हमारे सामने है, और करीब नहीं जरा दूर थोड़ा सा वहाँ सुतून है, सुतून के वहाँ खड़े रहें और बहुत अदब के साथ आप आहिस्ता आवाज से सलाम पेश करें, हमारे उलमा अहनाफ में से अक्सर तो यूँ कहते हैं कि अस्सलाम बगैर अस्सलातो के ये अफजल है, اور دونوں پڑھیں تو بھی بہرحال. یعنی صلات کا مطلب درود, تو درود تو جو ہے یعنی یوں پیش کرنے میں السلام علیکم یا رسول اللہ, باقی الصلات والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیکم یا نبی اللہ, الصلات والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلات والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف آپ کو معلوم ہیں, اس کو آتے جائیے پڑھتے رہیے, اور اخیر میں پھر جب وہ پورا ہو جائے تو وہ رحمت اللہ برکات, اور پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ درخواست کہ اللہ کے رسول گناہوں کے بوجھ نے جو ہے میری کمر توڑ دی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت درخواست کریں, اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اس طرح, اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر پر سلام, السلام علیکم یا ابا بکرین صدیق, السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ورحیم و رحمۃ اللہ, پھر حضرت عمر پر السلام علیکم یا عمر الفاروق, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم یا عز الاسلام والمسلمین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر وہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پیش کر کے وہاں بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں, یاد ہو تو کہتے ہیں, نہ یاد ہو تو خالی صلاۃ و سلام پر اکتفا. اس کے بعد پھر جن لوگوں نے آپ کے ذریعے سے سلام بھیجا تھا ان کا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائے کہ اللہ کے رسول آپ کا فلانا امتی جو آپ پر ایمان رکھتا ہے اس نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے, آپ اس کو قبول فرما لیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے اللہ سے ان کی اس کے لیے سفارش فرما لیں. اس طرح سب کی طرف سے نام یاد رہے تو جن جن لوگوں نے کہ بہت سے اللہ آپ کی امتیوں نے آپ کی طرف سلام بھیجا ان کو قبول کر لیں, اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جنت البقیع کی زیارت کے لیے وقت ہو تو جائیں, وہاں پر بھی مختلف جو مزارات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے جا کر کے وہاں, یا پہلے چونکہ امہات المومنین اور بنات طاہرات وغیرہ کا پڑتا ہے تو وہاں سے فارغ ہو کر جائیں, بہرحال وہاں بھی ہر ایک کے یہاں جو ہے زیارت قبر کریں اور وہاں بھی سلام پیش کریں دعا کریں, اور وہاں قبا ہے مسجد قبا اس کی زیارت کے لیے بھی جانے آنے کا سلسلہ رہے, اور جب تک وہاں قیام رہے درود کی کثرت کا اہتمام کریں, جتنا زیادہ درود ہو پڑھتے رہیں, اور ادب سے مسجد نبی میں رہیں تو وہاں بھی ادب کا پورا اہتمام ہو, اور پھر واپسی میں پھر نبی آخر میں جب صلاۃ و سلام پیش کریں تو دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں حاضری کا موقع عطا فرمائے, اور اس طرح یہ اپنا سفر پورا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق. ہاں جی, اب دو مسئلے رہ گئے, ایک تو آپ مقیم ہیں یا مسافر, یہاں آج کل جو ہے مینا کی آبادی بھی مکہ مکرمہ کی آبادی سے بالکل متصل ہو چکی ہے, اس لیے آپ جب وہاں ایسے وقت میں پہنچے مکہ مکرمہ کہ مینا آٹھویں تاریخ کا آپ کا قیام مینا میں ہے, تو آٹھویں تاریخ کو شامل کر کے آپ جس دن گئے ہیں وہاں سے لے کر آٹھویں تک پورے 15 دن ہوتے ہیں, تو آپ کیا ہو جائیں گے مقیم. اب وہاں مکہ مکرمہ میں تو ویسے بھی آپ مسجد حرام میں نماز ادا کریں گے اماموں کے پیچھے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں رہتا, لیکن جب آپ وہاں منا میں پہنچتے ہیں تو وہاں اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو پوری نماز ادا کرنی, یا آپ کا امام مقیم ہو تو بھی پوری کریں گے, اس کے بعد عرفات, عرفات میں بھی آپ پوری پڑھیں گے, واپس مکہ مکرمہ آ کر بھی آپ کو پوری پڑھنی ہے, مقیم ہو چکے ہیں ایک مرتبہ, اس لیے چاہے آپ واپس آ کر کے جب مدینہ منورہ جائیں, اور اگر شروع میں آپ گئے اور وہاں جانے کے بعد مدینہ منورہ جانے کا آپ کو جو ٹائم ٹیبل دیا گیا اس کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 15 دن پورے مکہ مکرمہ میں قیام نہیں ہوتا, آپ کو بتلا دیا ٹور والے نے یا آپ کو معلم نے بتلا دیا کہ آپ کو 12 دن کے بعد مدینہ جانا ہے, تو آپ مقیم نہیں بنے, کیا ہیں مسافر. ابھی تو ویسے تو حرم میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, البتہ عورتوں کو خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے گی تو چونکہ وہ مسافر ہیں اس لیے کیسی پڑے گی قصر کے، ان کو اہتمام کے ساتھ مسئلہ بتا دیں تاکہ وہ اس کا خیال رکھیں، ورنہ اگر وہ پوری پڑھ لگی تو گڑبڑ ہے۔ بارہ وہاں اگر پورے 15 دن نہیں ہوتے تو آپ مسافر ہیں۔ پھر مدینہ منورہ سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آٹھویں کو ملا کر کے پورے 15 دن نہیں ہوتے تو بھی ابھی آپ کیا ہیں؟ مسافر۔ پھر عرفات سے واپس آئے اور ابھی بھی 15 دن نہیں تو ابھی بھی مسافر، اس تک مسافر رہے۔ اچھا، اور اگر جاتے ہی مکہ مکرمہ جاتے ہی آپ کا جو شیڈیول بنا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کے دن پورے 15 وہاں ہو جاتے ہیں تو آپ کیا بن گئے؟ پھر تو حج میں جائیں گے، واپس آنے کے بعد بھی جب تک مکہ میں ہیں آپ کیا کہلائیں گے؟ اور پھر مدینہ جب جائیں گے تو پھر مسئلہ آپ کا آئے گا۔ اور اگر 15 دن پورے چاہتے ہیں جانے کے اوپر، یعنی وہاں جب پہنچے تو 8ویں کو ملا کر پورے 15 دن نہیں ہوتے تو آپ کیا ہیں؟ مسافر۔ اب وہاں سے عرفات 9ویں تاریخ کو، 10ویں کو جب آپ آ گئے کہاں؟ منا میں، 10ویں کو ملا کر، 10ویں کو بھی شامل کر کے، اس لیے کہ منا میں آ چکے ہیں تو 10ویں کے دن کو ملا کر 10ویں 11ویں 12ویں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ جب جائیں گے تو وہاں ٹھہر کر، جب آپ واپسی ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے تو 10ویں کو ملا کر آپ کو پورے 15 دن ہوتے ہیں، تو اب کیا ہو گئے آپ؟ حج کے بعد پھر یہ منا کے قیام میں آپ کیا کہلائیں گے؟ حج سے پہلے نہیں تھے، اب ہو گئے اگر 15 دن ہوتے ہیں تو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نہیں تو نہیں۔ اور یہ تو مقیم کی بات تھی، اگر آپ کا امام مقیم ہے تو بہرحال آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہے، آپ کا امام مسافر ہے اور آپ بھی مسافر ہیں تو اس کے ساتھ سلام پڑھیں گے، نہیں تو اس کے سلام پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ یہ تو مقیم مسافر والی بات تھی۔ دوسری بات قربانی کی آتی ہے، قربانی کی آتی ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ جو تمتو والا جانور ذبح کرنا وہ تو الگ تھا، یہ جو عید کی قربانی ہم گھروں پر کرتے ہیں وہ ایک الگ سے ہے، وہ دینی ہے یا نہیں؟ تو آپ اگر وہاں مقیم ہو گئے ہیں، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو شریک کر کے 15 دن پورے ہو جاتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس مال ہے اتنا نصاب جتنا، تو آپ پر وہ جو ہے عید والی قربانی بھی کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہے۔ اب وہ چاہے وہاں دیں یا یہاں آپ اپنے گھر پر اس کا انتظام کر لیں، کر عید والی قربانی، حج والی قربانی کا انتظام یہاں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں یہاں کر لو یہاں سستی پڑے گی، وہاں تو 300-400 ریال دینے پڑتے ہیں تو یہاں سستی ہے، نہیں وہ تو وہیں کر لیں۔ ایک عید والی قربانی وہاں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی، اگر آپ مقیم ہو چکے، اگر مسافر ہیں تو باوجود پیسے کے بھی عید والی قربانی آپ پر واجب نہیں، آپ ویسے گھر پر انتظام کر کے گئے یا کریں تو بہت اچھا، بات دوسری، بات یہ واجب ہے۔ یہ قربانی کا مسئلہ ہو گیا، تو مقیم مسافر کا ہو گیا مسئلہ، قربانی کا مسئلہ ہو گیا، اور وہاں جو ہے وہ جنازے کی نمازیں بھی پورا کوٹا، زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھنی ہیں وہاں پورا کرواتے ہیں اللہ میاں، کہ بہت یہاں تو نہیں پڑھنے جاتے، وہاں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ، تو بہرحال اب وہ جنازے کی نماز کا طریقہ تو معلوم ہی ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو آپ بھی جماعت، جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں وہ ہیں اصل فرض، دعائیں وغیرہ تو سننا تھی، تو اگر خالی 4 تکبیریں بھی کہہ لی تو آپ کا کام ہو گیا، تو آپ امام کے ساتھ شروع ہی سے اگر ہیں تو بہت اچھا، لیکن وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں میں کتاب وہ جنازے کی نماز شروع ہو گئی، سلام پہ کے جب شریک ہونے گئے تو 2 تکبیریں ہو چکی ہیں، اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ تو جیسے یہاں اگر آپ مسجد میں آئے تو امام 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے تو بعد والی 2 رکعتوں میں آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے، اور امام کے سلام پہننے کے بعد آپ کی چھوٹی ہوئی 2 رکعتیں آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری کرتے ہیں۔ اس طرح وہاں بھی کہ آپ نماز میں تھے اور وہاں جنازہ کی جماعت شروع ہوئی، آپ نے سلام پھیر کے جب جنازے کی نماز میں شروع ہونے کے لیے اٹھے تو 2 تکبیریں ہو چکی تھی، تیسری تکبیر جب امام کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہیں گے، یہ آپ کی کیا ہوگی؟ پہلی۔ پھر امام جب چوتھی کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ کہیں گے، آپ کی کون سی ہوگی؟ دوسری۔ امام جب سلام پھیرے گا تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جنازہ وہاں امام کے سامنے رکھا ہوا وہ اٹھے، اس سے پہلے پہلے آپ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجئے اور پھر سلام پھیر دیجئے، نماز ہو گیا۔ دعا کا مسئلہ، وہ جو 2 تکبیریں امام کے ساتھ کہنے کا موقع ملا اس میں جتنا بھی ہو جائے सना भी और क्या है दुरूद भी और दुआ भी तो कर लीजिए, नहीं तो दुआ नहीं भी होगी तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये जनाजे की नमाज की तरतीब है, ये हो गया। ये अमूमन यही चीजें पेश आती, अब तो कोई चीज नहीं रहेगी। नहीं उसकी तरफ निगाह का तो कहीं दिखा नहीं, उधर से नहीं गुजरा, आपके इल्म में है देखा है, वैसे वो कहीं किताब में तो है नहीं कि उस काबा शरफ काबा तरफ काबा की तरफ निगाह करें। बल्कि हजरत जो है हजरा का भी जो अमल साबित है तो वो तो इसीलिए दौड़ती थी कि वहां से काबा नजर नहीं आता था उस जगह से, इसलिए उनको दौड़ना पड़ा जी। नहीं जमरा अकबा जमरा अकबा की नमी के बाद दुआ नहीं, और बाकी दिनों में भी जमरा अकबा की नमी के बाद किसी दिन दुआ ही नहीं, मतलब एक होता वहां से चल ही देना है। पहले और दूसरे जमरे की रमी के बाद दुआ है, हर वो रमी जिसके बाद दूसरी रमी है वहां दुआ है, और जहां नहीं तो नहीं। हाँ, एहराम की हालत में मोजे जूते पहनना तो ममनू है, लेकिन सर्दी की वजह से चादर से अगर पैरों को ढांप लिया तो कोई हरज की बात नहीं, चादर ऊपर डाल देना चाहिए, वो उसमें आता नहीं लिबास में पहनने। अब यह है कि नीचे वाली चादर जो है जो एहराम में पहन रखी है उससे आदमी कमजोरी की वजह से बीमारी की वजह से अपने आप को संभाल न सकता हो तो उसके ऊपर कुछ टांके लगा दिए या जो है वो पिन मिन लगा दी तो उसकी इजाजत है, बिला इसके लगाना उसको मकरूह तंजीही करार दिया है, इसलिए अगर मुमकिन हो अपने हिफाजत तो फिर लगाई लगाया न जाए। औरतों के बाल का मसला जो है, एक तो एक औरतें जब एहराम बांधेगी तो एहराम की नियत करने के बाद वो अपने सर पर एक कपड़ा भी बांध देती है जिसको वो औरतें कहती है औरतों का एहराम, इसका नाम रखा है। वो असल में ये कपड़ा जो औरतों के सर पर बांधा जाता है सफेद औरतें बना कर लाती हैं, वो इसलिए होता है कि वो बाल उनके टूट के न गिरे, इसलिए खुला कभी होता है तो बाल टूट के गिरने का अंदेशा रहता है डर, तो उससे हिफाजत के लिए। लेकिन जब वुजू करेंगी तो वो कपड़ा हटा करके मसा करेगी, नहीं तो वुजू सही नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अगर वो कपड़ा इतना बारीक है कि उसके ऊपर से मसा करने की सूरत में भी अंदर तक पानी का असर पहुंच जाता है तो ठीक, वरना तो वुजू नहीं होगा। बहुत सी औरतें नहीं समझती, वो कपड़ा यूं ही रहने देती हैं और वुजू भी इसी तरह करके लेती हैं तो वुजू नहीं होता और फिर नमाज भी नहीं होती। तवाफ में भी औरतों को चाहिए कि मर्दों से अलग या किनारे पर तवाफ करें और मर्दों की भीड़ में लघु से आप बहुत ज्यादा ये होगी होने की हालत में भी अपने आजा को छुपाने का अहतमाम करें, इसलिए कि बहुत सी हमारी औरतें जो होती है ये खुला हुआ रहता है नमाज में, तो वो बराबर ये करती है और तवाफ में ये खुला हुआ होता है, तवाफ तो तवाफ भी सही, तवाफ में भी सतर को छुपाना वाजिब है और औरतों के लिए ये सब सतर दाखिल है, ये हिस्सा सतर में दाखिल है। इसलिए चेहरे और हथेलियों के अलावा कोई और चीज अगर खुली रह गई औरत की तो इतनी है पांव हिस्सा और कितनी देर तक जितना दिन से, तो उस सूरत में नमाज उसका तवाफ सही नहीं होगा, इसलिए तवाफ के अंदर भी पूरे सतर को छुपाने का इस्तेमाल करेगी औरत। और बाल काटने का मसला जो है, तो औरत जो है वो अपनी चोटी को अगर वो यूं है ये चोटी है तो इसको ये उंगली के ऊपर यूं इतनी ऊपर लपेट करके फिर यहाँ से काटे तो इतना हिस्सा कट गया तो वो एक एक पूर्वे के बराबर काटा अगर तो उससे हलाल हो जाएगी। एक तरफ ये चोटी का हिस्सा अगर उसमें सब तरफ के बाल आ गए हैं और एक तरफ से भी काटा तो भी वो अदा हो जाता है, लेकिन चोटी के अंदर अगर सब बाल आ जाते हो तो वो बेहतर करार दिया गया है उसको यूं करके काट ले, जरा इसीलिए जरा ज्यादा मोड़ेगी ताकि पूरे बाल आ जाए, कोई बाल छूटने। तो औरत खुद भी काट, यानी जब सारे काम कर चुकी सिवाय अब बाल काटने के और कोई काम नहीं रह गया तो वो खुद भी अपने बाल काट सकती है, इस तरह आप भी मर्द भी अपने बाल खुद अपने हाथ से काट सकता है, लेकिन पहले बाल काटे उसके बाद नाखून, किसी ने अगर बाल काटने से पहले नाखून काट लिए तो फिर दम नाखून का दम अलग वाजिब होगा। दूसरे के भी बाल काट सकता है अपने भी काट सकता है, जैसे उम्रे में अगर तवाफ और सही कर ली अब बाल काटने के रह गए तो आपने अकेले के बाल हो तो आपने खुद ही दूसरे के काट सकता है, दूसरा इसके काट सकता है। हाँ, वुजू के बाद बहुत से लोग गलती करते हैं, वुजू के बाद यूं पूछते हैं तो सदका वाजिब होगा। वुजू के बाद भी यहाँ तो कपड़ा डालना ही नहीं है। हाँ, वुजू के बाद आप हाथ से तो यूं कर सकते हैं, कपड़े से अगर पूछा तो सदका वाजिब है, इसलिए वुजू के बाद भी पूछने की इजाजत नहीं है, वो मुंह ढांकने के हुक्म में आ जाता है। टिश्यू पेपर से भी तो ढांपना लाजिम आएगा, टिश्यू पेपर भी रखेंगे ना ऊपर, है ना। हाँ, वही तो मुंह पूछने में मुंह का ढांपना लाजिम आता है, इसलिए मना है। पूछना असल तो मुंह का छुपाना ही आता है, इसलिए मना किया गया। अब ये बात है कि भाई आपका हवाई जहाज जो है डायरेक्ट नहीं है बम्बई से जद्दा, बल्कि आप कुवैत होकर के या दुबई होकर के या दमिश्क होकर के या अम्मान होकर के जाते हैं, तो उस तरह में वहाँ जब आपकी फ्लाइट बदले, वहाँ के एयरपोर्ट पर आप ट्रांजिट में हो, तो वहाँ पर अगर आप अपना अहराम पहन करके, कोई हैरान की बात नहीं, इसलिए कभी मीकात आया नहीं हो तो बतला, बल्कि वहाँ के बाद भी अभी नहीं पहना, वहाँ भी ऐसे हवाई जहाज में बैठे कपड़े डाल के अभी नियत की ने और जद्दा आने से डेढ़ एक घंटा पहले नियत की तो कुछ कर सकते। और इस्तीफा पूरे तवाफ, इस्तीफा पूरे तवाफ में है, रमल सिर्फ पहले तीन शौत के अंदर, और जब वो तवाफ पूरा हो जाए और तवाफ की दो रकात पड़े तो उससे पहले इस्तीफा खोल करके कंधे को नाप लेंगे। तवाफी में इस्तीफा है, दो रकात पढ़ने बाद लोग वो दो रकात पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, नहीं वो उस वक्त तक कंधा खुला रखते हैं, कंधा ने उस वक्त नाप लेना चाहिए। तो मुंडवाना जरूरी है, और चाहे सर पे बाल बिल्कुल ही ना हो तो भी उस्तुरा फिरा, उस्तुरा फिराने से बर्दादा होगा। हो गया। हाँ, वहाँ भी 12 औरतों के लिए तो मसला यही लिखा है कि उनके लिए घरों में नमाज पढ़ना अफजल है, सवाब ज्यादा है। मदीना मुनव्वरा में वहाँ ज़ियारत के लिए सलाम के लिए तो जाए, नमाज घर में पढ़े, वैसे वहाँ भी पढ़ेगी तो उनके लिए आगरा का इंतजाम हो जाता है, वहाँ तो कसर ही पड़ेगी, 10-15 दिन होते नहीं है। हाँ, जमात के साथ पढ़ो, ये तो पूरी पड़ेगी।
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ تیرے جتنے بندوں نے بھی حج کے ارادے کیے ہیں نہایت عافیت سہولت و راحت کے ساتھ اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما، اللہ اس راہ کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ احرام کی ساری نزاکتوں کا پورے طور پر لحاظ کرنے کی اور ان کی پابندیوں کو اللہ نبھانے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما اور اس کے لیے اس کو آسان فرما، ہر طرح کی جنایتوں سے اور اے اللہ احرام کی منافی باتوں سے پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے لیے وہاں کا قیام آسان فرما، اے اللہ حرمین کے قیام کو پورے طور پر وصول کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما، وہاں کے ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ وہاں کے آداب، وہاں کے حدود، وہاں کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں ہماری آنکھوں کی، زبان کی، آنکھانوں کی، ہر چیز کی ہر اے اللہ پورے طور پر حفاظت فرما، اے اللہ رفقا کے ساتھ اے اللہ محبت سے پیش آنے کی اور اے اللہ ان کے لیے اظہار و قربانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے جھگڑوں سے، اختلافات سے، اے اللہ آپس کے نزاعات سے بھی ہر ایک کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے برکات سے، ثمرات سے، اے اللہ انوار سے حظ وافر عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین کا.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.